Sri Bhupinder Singh Ji did his civil engineering, but his inner desire for social upliftment and enlightenment carried him away onto this noble path. He has conducted various workshops all over India and even abroad. He has dealt with difficult and complex aspects of human life like stress, harmony, love, fear, conscience, prayer, reincarnation, etc. Wherever he has been, he has touched the hearts of his audiences through his fluent oratory skills. He is a part of a Delhi-based NGO, The Living Treasure. The real aim behind is self-realization. It is just not preaching, but making us realize what we are and what is the real aim of our life. He has transformed many people into responsible citizens. So friends, let us not miss this golden chance to join his enlightened brigade. The mic is all yours, sir.
I am really honored to share among such a highly educated people. And I know you are the people who check the papers of the students and find the mistakes. So I should not commit any mistake. Let me share something in my language. My language is Hindi or Punjabi. आप सब लोग बहुत मुश्किल से इस platform पर पहुंचे हैं कि आपको ये सेवा करने को मिली. सर्विस में बोलूं तो वो जॉब लगता है, सेवा. और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो कंपटीशंस और जो पढ़ाइयाँ आपने की हैं, आई कैन फील कि आपने कितनी मेहनत की होगी, बिकॉज द सिस्टम इज वेरी 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 टफ. और ये डे बाय डे टफ होता जा रहा है. अगर हम आज कुछ ऐसा शुरू करें जिससे ये इजी भी हो जाए आने वाली जनरेशन्स के लिए और आपके लिए भी, तो मैंने कुर्बानी में से एक मैसेज समझा है, उसको बोलते हैं विद्या विचारी द परोपकारी. इसकी ट्रांसलेशंस ऐसे की जाती हैं, ट्रेडिशनल, कॉमनली नोन और इन नोशंस. क्या अगर आपने किसी को एजुकेट कर दिया तो आप परोपकारी हैं. बट व्हाट आई फाउंड आउट ऑफ इट कि अगर आप विद्या को विचारते हैं तो मालूम है क्या होगा, आप परोपकारी बन जाएंगे. यू विल बी ए पर्सन हु इज कन्वर्टेड. क्या बन गया वो, क्या कन्वर्ट हो गया, काइंड हार्ट. काइंड हार्ट हमारा आज पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है. आई डोंट नो आप में से कौन कौन है. तो आज जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस जर्नी को करेंगे, तो इसमें करते हुए कुछ भी अगर मैं टीचर्स या स्टाफ के बारे में बोलता हूँ और वो आप में फ्लॉ अगर डेफिशिएंसी नहीं है, प्लीज फॉरगिव मी, एंजॉय योर एस्टीम, डोंट माइंड. बट आई एम टॉकिंग इन जनरल, तो मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता. मैं जो वर्ल्ड वाइड पूरा घूमा हूँ, देखा है, रहा हूँ, लोगों को टच किया है, तो उसमें से जो मुझे समझ में आया मैं वो शेयर कर रहा हूँ. हम सब जानते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे, जानते हैं कि हमें भी माँ बाप ने ब्रॉटअप किया, ये भी जानते हैं कि हम भी पढ़कर टीचर बने हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं. हमारे बच्चे मेरे स्कूल में मेरे से ही सारी उम्र नहीं पढ़ेंगे, ये सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है. और ये भी मालूम है कि मेरे बच्चे जिस टीचर के पास जाते हैं, जैसा रॉन्ग बिहेव मैं करता हूँ करती हूँ, वैसा मेरे बच्चे के साथ भी होता होगा, तो मेरा बच्चा क्या सोचता होगा. अगर मुझे ये बात में समझ आ जाए तो ये जो बच्चा है इसके साथ मुझे कैसे डील करना चाहिए. लेकिन ये बातें तो मम्मी पापा भी जानते नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को शो किया. वी आर वेरी वेरी बिजी पीपल. हम बिजनेसमैन हैं, हम जॉब पे जाते हैं, करियर है, हमारे पास अपने बच्चे को संभालने का टाइम नहीं है. मम्मी आई एम वेरी बिजी, या मेरी जॉब है और या मैं घर में बहुत बिजी हूं, सोसाइटी में मेरा नाम है, इसलिए हमारे बच्चे तुम संभाल लो. द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज थ्रोन ऑन योर शोल्डर्स. मम्मी पापा भी नहीं जानते हैं. अब क्या किया जाए, कहां से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए? अगर हम इस बात को सोचें कि हो क्या रहा है, एक मम्मी अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने जाती है. फर्स्ट डे, मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, मैम प्लीज इसका ध्यान रखना, ये तुमको तंग करेगा, लेकिन ये बहुत ही प्यार मांगता है, इसको गुस्सा मत करना, बड़ा ही डर जाता है, डरपोक है. ओके, हाँ ये नॉटी बहुत है, तंग बड़ा करेगा आपको, तो मालूम है क्या करना है, जो इसके साथ बैठा हुआ बच्चा है ना, उसको थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा, चुप कर जाएगा. राइट अब ये बात हमारे साथ हो गई, इट इज हैपनिंग विद अस, के साथ वाले को मारो, मेरे बच्चे को मत मारो. लेकिन हम तो स्कूल में आए हैं, हम तो सब कुछ अपने यहां के स्टूडेंट्स के साथ वो कर रहे हैं जो मैं चाहती हूं मेरे बच्चे के साथ ना किया जाए. सो कहां पर गेम खो गई, हम कहां पर उखड़ गए, कहां पर बिछड़ गए, नहीं मालूम. कल हमारा एक जगह प्रोग्राम था, वहां की स्टोरी को मैं यहां दोबारा रिलेट करना चाहूंगा. एक अंधा आदमी है और उस अंधे को उसके फ्रेंड ने दावत पर बुलाया, डे टाइम में बुलाया था, लंच हो गया, इवनिंग टी हो गई. दावत देने वाला बोलता है, अब तूने अगर घर जाना है तो अब मत जा, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया. सो वो अंधा बोलता है, तो क्या, मुझे तो नजर आता ही नहीं है, सूरज चढ़ा है या नहीं, सो व्हाट. तो इस होस्ट ने उसे बोला, अगर तू जाना ही चाहता है तो मैं जानता हूं कि तू अपना रास्ता अपनी इस स्टिक के साथ टोक के घर तक तो पहुंच जाएगा, पर कोई लोग तुझसे ना टकरा जाए, इसके अपने हाथ में ये मोमबत्ती को जलाकर ले जा, लोग तुझे देख लेंगे. He said, okay, मोमबत्ती जला दी, उसको पकड़ा दी और वो स्टिक के साथ जा रहा है. He knows his way. पर रास्ते में कोई इंसान उससे टकरा गया और छूटते ही, क्योंकि आंखों वाले जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, एग्रेसिव होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमको सब कुछ मालूम है, इसलिए वो छूटते ही पहले पूरा एग्रेशन शो करते हैं. तो उसने उसको बोला, तुम अंधे हो, समझ नहीं आती. He said, yes, मैं अंधा हूं, मुझे वाकई नजर नहीं आता. अंधा उससे पूछता है बड़ी हलीमी से, हम्बलनेस के साथ, नम्रता के साथ, अरे भाई मैं तो, मुझे मालूम है अंधा हूं, आपको नजर नहीं आता क्या, आप भी अंधे हैं? नो, नजर आता है, आपको मेरी मोमबत्ती नजर नहीं आई. यू नो वट ही सेड, आपके हाथ में मोमबत्ती है, मुझे नजर नहीं आई क्योंकि ये बुझी हुई है, आपकी मोमबत्ती बुझ गई है तो मैं आपको कैसे देखता, तो आप तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे. अब ये स्टोरी ये बताती है हमको, अंधे के हाथ में अगर मोमबत्ती दे दो, वो जल भी रही है या नहीं जल रही है, इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि अगर वो मोमबत्ती बुझ जाए तो दूसरों के काम भी नहीं आएगी, उसको तो वैसे ही काम नहीं आती. तो हम लोग तो पढ़ गए हैं, हम लोग कितनी मुश्किल से इतनी डिग्रीज लेके, इतने बिगर कंपटीशन के बाद इतनी मुश्किल से यहां पर पहुंचे हैं, और हम हर किसी को ये प्रूव करना है कि मैं वो सुपरमैन और सुपर वुमैन हूं, मैं वो वाला टीचर हूं जो दुनिया में बेस्ट है, मेरे जैसा कोई नहीं. ओके, ये प्रूव करने के चक्कर में हम पढ़ तो गए, सब कुछ कर लिया, हमारे हाथ में मोमबत्ती है कि हमारे पास डिग्री है, हम पढ़ के आए हैं, पर क्यों हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द टीचर्स. ये टीचर समझ जाए अगर, सब कुछ एकदम से बदल जाएगा. मुझे क्षमा करना, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज आज स्टाफ के साथ मीटिंग हो रही है. अगर पेरेंट्स होंगे तो मैं उनसे भी बात करता हूं. मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पेरेंट्स मीटिंग्स में हम जाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं. आज हम ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मिस ना कर जाए, यू आर टीचर्स, वेरी क्वालिफाइड टीचर्स. मैं सेल्फ एस्टीम में अपने आप को घटिया नहीं समझ रहा, पर मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है मैं कितने हाईली एजुकेटेड लोगों के बीच में बैठा हूं, जिन्होंने कितने लोगों को पढ़ाकर आगे भेजा है, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हैं, जो इस देश को रन कर रहे हैं, जो बहुत कुछ बन गए हैं, वो आप लोग हैं. मुझे बिल्कुल सेल्फ एस्टीम में छोटापन महसूस नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं हो रहा, बट आई रियलाइज माई लिमिटेशंस, आई रियलाइज माई एजुकेशन एंड माई नॉलेज, कि आप लोग मेरे से कितना ज्यादा ज्यादा जानते हैं. इसलिए मैं आपको एजुकेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं, क्योंकि जितनी बातें बताऊंगा सब आप जानते हैं. हमारे प्रोग्राम का नाम है लिविंग ट्रेजर, वेबसाइट है www.thelivingtreasure.com. हमने प्रोग्राम का नाम लिविंग ट्रेजर इसलिए रखा है कि हमारे प्रोग्राम का दुनिया का कोई भी इंसान मेंबर बन सकता है, क्योंकि हम प्रोग्राम में लेक्चर करते हैं कि हम आपके अंतरात्मे में, आपके हृदय में, आपके पास, आपकी कॉन्शियस में जो ट्रेजर आपके पास है, जो खजाना हर इंसान भगवान से लेकर, खुदा से लेकर, वाहेगुरु जी से लेकर यहां पर पैदा होता है, हम उस ट्रेजर की बड़े प्यार से आपको चाबी देना चाहते हैं. बस अपना ट्रेजर खोलो एंड एंजॉय इट. ये तीन गोल चाहिए बस. पहला गोल चाहिए विनिंग, दूसरा गोल चाहिए लूजिंग, और तीसरा गोल चाहिए शेयरिंग. पर हमने विनिंग क्या समझा हुआ है? जिस स्पोर्ट्स टीचर को हम रखते हैं, हमने विनिंग का मतलब समझा हुआ है पूरी दिल्ली में से और पूरे इंडिया में से ट्रॉफी लेकर आए, टीम को जिताए, उस टीचर का ये काम नहीं है. जिताना काम नहीं है, क्योंकि हर स्कूल वाले का यही एम होगा कि टीचर जिताना चाहिए तो किसको देंगे. क्योंकि एक बार पूछा भी था किसी ने किसी से कि अगर लोग 10 बंदे भाग रहे हैं तो उनमें से कप किसको मिलेगा. उसने कहा जो सबसे आगे है, तो उसने कहा उसको कब मिलेगा, बाकी 9 को क्यों नहीं मिलेगा, वो हार गए. तो उसने बोला फिर कब मिलना ही अगर एक को है तो 9 भागते ही क्यों है. अगर कोई ना कोई तो जीतेगा, ये तो गलत गेम एक कंपटीशन की चल गई है. कोई जीतेगा, किसी को हम कॉम्प्लेक्स में रियलाइज कराएंगे तुम हार गए हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, वो स्टूडेंट बढ़िया है, तुमको अकल नहीं है, तुम पीछे बैठ जाओ, तुम बाहर खड़े जाओ, तुमको सजा मिलेगी. ये तो हम करते ही हैं कंपटीशन में. पर हमसे हैंडीकैप्स अच्छे हैं, सारे हैंडीकैप्स का रेस होने वाली है और सारे हैंडीकैप्स को खड़ा कर दिया. कोई एक एक क्रच लेके खड़ा है, कोई 2 क्रच लेके खड़ा है, किसी की दोनों टांगे टेढ़ी हैं, वो चल नहीं सकता, पर सारे के सारे खड़े हैं. और ओलंपिक गेम शुरू हुई, द होल ऑडियंस वाज रियली स्टंड टू सी दिस, कि 5-10 कदम चलने के बाद एक हैंडीकैप गिर गया, लेकिन जब फाइनल रिबन के पास पहुंचे तो 10 के 10 पहुंचे. कैसे? ऑडियंस वॉज रियली स्टंड टच्ड टू सी कि बाकी के बाकी 9 जो हैंडीकैप थे वो 1 कदम आगे जा चुके थे या 2 जा चुके थे. उन्होंने देखा एक बंदा मिसिंग है, पीछे मुड़ के देखा और वापिस उसको गए, उसको उठा लिया और 10 के 10 इकट्ठे रिबन पार कर गए. हमसे तो हैंडीकैप अच्छे हैं. हम तो कंपिटिशन में एक दूसरे को ऐसे रियलाइज कराते रहते हैं. क्यों? तो विनिंग का मतलब ये नहीं है कि टीचर उसको इनाम दिलाएगा, स्कूल को ट्रॉफीज लेके देगा. विनिंग का मतलब हम सब ने ये सीखना है, हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल. लोगों का दिल कैसे जीते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं टच कैसे कर सकूं, मैक्सिमम लोगों के हार्ट में मैं अपने आप को क्रिएट कैसे कर सकूं कि वो जब जब भी जहां कहीं भी बैठे हो वो इस बात को याद करें, उनके दिल में 6000 वाट का बल्ब जल जाए. ऐसा प्यार, इसको गुरबानी में बोलते हैं भाई भगवान स्वयंभंग है, अपने आप से प्रकाशमान है, हम लोगों के दिलों में कैसे उनके अंदर प्यार जगाएं, अदरवाइज पीपल डोंट वांट टू कीप अस इन देयर हार्ट। हम कैसे बन गए हैं? एक ऐसे बंदा लेक्चर दे रहा है और लेक्चर देते देते बार बार ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर ऐसे कर रहा है। आगे एक बच्चा बैठा है, बोलता है सर आप ये जो लेक्चर देते हुए ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, अच्छे नहीं लग रहे। यू नो व्हाट ही सेड? अगर मैं ऐसे ना करूं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। तो हम एक्चुअल में अच्छे नहीं लग रहे हैं, बच्चों को हम अच्छे नहीं लगते हैं, पति को हम अच्छे नहीं लगते हैं, पत्नी को अच्छे नहीं लगते हैं, मम्मी पापा को अच्छे नहीं लगते हैं, सास को अच्छे नहीं लगते हैं, बहू को अच्छे नहीं लगते हैं, आसपास के रिलीजन वालों को अच्छे नहीं लगते हैं, रिक्शे वाले से लेकर ऊपर तक सब किसी को हम अच्छे नहीं लगते हैं। हम इस अच्छे लगते नहीं हैं को ठीक कर सकते हैं, एक ही चीज सीखनी पड़ेगी, विद्या विचारी तब परोपकारी, मुझे परोपकारी बनना है। हाउ टू विन द पीपल्स हार्ट? बाई गिविंग देम एवरीथिंग। हमने एक चीज सीखी एंड इट वर्क्स, दोज हु आर कमिंग टू द लिविंग ट्रेजर सेमिनार्स। हम मम्मी पापा बोलते हैं, टीचर बोलते हैं तेरे भले के लिए कह रहा है, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा है, करना कर लो नहीं तो बर्बाद हो गए, मैंने तो कह दिया मुझे इसमें क्या लेना है। दिस इज जस्ट इंपोजिंग, दिस इज जस्ट डोमिनेटिंग। एंड द परोपकारी, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपने मुझे चांस दिया शेयर करने के लिए, इसमें आपका भी भला है मेरा भी भला है, लेकिन मैं आपके ऊपर इंपोज नहीं कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो यूज कर सकते हैं। दिस इज अनदर वे टू पुट अप प्यार। सो विनिंग लूजिंग, हमने लूज क्या करना है? ईगो, ईगो बोलते तो है, ईगो लूज करनी है, पर ईगो क्या चीज होती है? अंडे का अंदर का पीला योक होता है क्या, या बाहर का व्हाइट पार्ट होता है, या हिरन के अंदर कस्तूरी को ईगो बोलते हैं? पता ही नहीं ईगो क्या होती है। वेरी सिंपल, यस आई एम नथिंग। आपने दो सुना ही, फाइन। आपने मुझे गाली दी, फाइन। जब मैं इंडिया में होता था तो उन दिनों में शॉर्ट लेग पे वेरी गुड कैचर इंडिया क्रिकेट टीम में, सोलकर, एम आई राइट? सोलकर वेरी गुड एट शॉर्ट लेग। मैं ना शॉर्ट लेग का कैचर नहीं हूं, आपने गाली दी मैं कैच नहीं कर सका, आपने मुझे इंसल्ट किया मैं कैच नहीं कर सका, आई एम आउट ऑफ दिस टीम, मुझे सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट नहीं किया, थैंक गॉड आई एम नो मोर इन दिस गेम। अगर हम ये सीख जाए तो एक बारी हम आई थिंक यहां पर मॉडल टाउन के किसी स्कूल में डिस्कस कर रहे थे, एक बच्चा बोला कि अगर कोई मुझे बार बार इंसल्ट करे या मुझे बार बार गाली निकाले या मुझे कुछ रियलाइज कराए कि मैं घटिया हूं या समथिंग, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? तो मैंने उस बच्चे से भी यही डिस्कस किया, बाद में स्टाफ में टीचर ने पूछा कि आपने जो उसको कहा वो तो हमारे लिए भी मैसेज है। मैंने कहा ओके आप भी ले लो, आपके लिए डिफरेंट टिकट थोड़ी ना है। क्या अगर कोई इंसान हारना चाहता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तो मैंने उसको बोला कि हम तो ये बताते हैं, यू नो मैं कितना पढ़ा हूं, यू नो माई डिग्री, यू नो किसे बात कर रहे हो, सी आई एम फ्रॉम अमेरिका, यू नो माई दिस जैकेट ब्रांड नेम, जानते हो किस कार में आया हूं, जानते हो मेरी जात क्या है, जानते हो मेरी सैलरी कितनी है, तुम्हारी औकात देखी है। हम दूसरे को इंसर्ट किए बिना खुश हो ही नहीं सकते, हम ऐसे कि जैसे हमारी पर्सनैलिटी दूसरे को इंसर्ट करके उसके सिर के ऊपर खड़े होकर उसको पूरी तरह कब्र में गाड़ कर ही बनती है। ओ माय गॉड, स्टाफ में एक दूसरे से खींचतानी है। देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करता हूं कि ऊपर टेंशन क्या है, पर स्टाफ की बात करते हुए मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि अगर एक पायलट अपना प्लेन ले जा रहा है और वो न्यूज देता है ऑडियंस को, पैसेंजर्स को, कि मेरे पास दो न्यूज है, गुड एंड बैड, गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, बट बैड न्यूज लेट मी शेयर फर्स्ट। बैड न्यूज क्या है? मेरे प्लेन का जो डायरेक्शनल कंपास है, is not working. Good news, I am maintaining my speed. Okay, so now we are maintaining our speed. We did itni mushkil se padhaiyan ki, B.Ed, M.Ed, this and that, Ph.D. karke, badi mushkil se, competitions ke baad, kisi ko kisi minister ki approach bhi lagani padi hogi, kisi ko bribe bhi deni padi hogi, badi mushkil se job liya, ab speed maintain rakhni hai. Syllabus khatam karo, bache ko ulta taang do, baki staff ke logo ki leg pulling karo, ma'am wo aise nahi karti, Mr. Chandan, you know, wo aise nahi karti, wo aise nahi karta, I am the best teacher. Hai na? Maintaining speed. Direction koi nahi, why I was here? Main yahan is kaam ke liye aaya tha. To agar hum ye log sab seekh lein, कि मैं इतनी डिग्री इतनी पढ़ाइयां करने के बाद यहां पर मिसेस गांधी मिसेस जोसेफ मिसेस भाटिया मिसेस सूद के बारे में बात करने आई हूं. सब लोग सोच रहे हैं डायरेक्शन चाहे कोई भी ना हो, स्पीड तो मेंटेन है, सिलेबस खत्म हो गया, प्रिंसिपल खुश है, एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरी प्रमोशन भी दे रहा है, मुझे बोनस भी मिल रहा है और सारे टीचरों से मेरी क्लास अच्छी है. डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन बीच में से मिसिंग है. वैल्यू एजुकेशन देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, सिलेबस खत्म करने के लिए तैयार हूं, मॉरल ड्यूटीज करने के लिए तैयार नहीं हूं, मॉरल स्टडीज कराने को तैयार हूं, मेरे को मेरा सिलेबस खत्म करना है. मिस्टर भूपिंदर सिंह जी, यू आर हियर, यू नो 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें भी सारे साल में कहीं पर स्ट्राइक हो जाती है, कभी बत्ती चली जाती है और कभी रोड बंद हो जाती है. ये भारत है, यहां पर इतने 40 मिनट के अंदर मैं वैल्यू एजुकेशन भी दे दूं बच्चों को और पढ़ा भी दूं. कौन बोलता है कि आप अपना सब्जेक्ट रोक के वैल्यू एजुकेशन दो? हर चीज में दी जा सकती है. मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, ड्राइंग पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, इट डजंट मैटर. सिर्फ एक जेस्चर है, प्यार. माय मामा जी, ही वाज प्रोफेसर सिंस 1955 इन न्यूयॉर्क. तो मैं जब भी हम डिनर पे बैठते थे तो मैं उनको पूछता था, यू आर सिक जेंटलमैन हैविंग टर्बन एंड टीचिंग इन मैनहट्टन वेरी हाई क्लास यूनिवर्सिटी एंड हाउ कम यू आर सो सक्सेसफुल. He said, the whole staff and the management and the students, they always love me, like me. He said, reason kya hai, secret kya hai, mama ji batao. He said, Bhupinder, you know, jab main class mein jata hun, mujhe pata lagta hai ki meri class mein at present somewhere 27 students hain. Par main dekhta hun class full hai, more than 27. Mujhe baat mein samajh mein aaya, auron ki class wale bhi students meri class mein aake baith gaye. मामा जी वो कैसे? He said, पता क्या है, और सब ना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और यहां पर फ्राउन के साथ पढ़ाते हैं. नाउ ओपन योर, नो मोर फालतू की बातें नहीं होंगी, सब्जेक्ट होगा ये है. सुनो, मामा जी जाते ही बोलते हैं, आज मेरे को एक नया जोक याद आया. सुनना है? तो जब वो बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे हंसते हैं, खुश होते हैं और ये खुशी खुशी में जब एक के बाद दूसरा जोक सुनाते हैं और सुनने के बाद उनको हंसते हुए वो फिर भी नहीं बोलते हैं कि इम्पोज कर रहा हूं अब मेरा सब्जेक्ट भी लो, बोलते हैं तुम्हारे में से किसी को जोक आता है? बच्चे सुनाते हैं तो मामा जी बोलते हैं, जब ये सारा ह्यूमरस माहौल फुल पीक पे हो जाएगा उस टाइम तुम जब मुझे कहोगे कि अपना सब्जेक्ट पढ़ाओ तो मैं तब शुरू करता हूं, मेरा सिलेबस ऑलवेज कंप्लीट हो जाता है बिफोर द टाइम. पर हमने सीखा पनिश करके. क्यों? क्योंकि हमारे को हजारों सालों से सिखाया गया है, यहां पर भगवान का नाम नहीं लोगे, खुदा का नाम नहीं लोगे, वाहेगुरु का नाम नहीं लोगे, मरने के बाद नरक में जाओगे, सड़ोगे, वहां पर जम तुम्हारे बाल पकड़ के घसीटेंगे और तुमको कड़ाई में तपाएंगे. इजंट इट? सजा, पनिशमेंट देकर रिलीजन सिखाया. ये बातें बड़े सालों से सुनने के बाद ना हमारे रग रग में आ गई हैं कि दूसरे को पनिश करके एंगर के साथ पढ़ाया जाता है, ह्यूमरस माहौल में नहीं पढ़ाया जा सकता. आप मुझे ये मत बोलना कि नहीं बच्चे समझते नहीं है. सी, अगर वो समझते होते तो वो आपके टीचर होते. दे आर हियर बिकॉज दे आर बच्चे. यू आर हियर बिकॉज यू आर क्वालिफाइड टू हैंडल दिस सिचुएशन. अगर एक माली बाग में फूल लगा ही नहीं सकता, पेड़ पौधे पत्तों को खाद दे ही नहीं सकता, और बोले क्या करूं, जमीन खराब है, आज बारिश नहीं हुई, सर ये नहीं हुआ, कलम खराब थी, गुलाब नहीं उगा, बकरियां आ गई थी, खा गई थी, एनीथिंग, देन यू आर नॉट माली. इफ यू आर माली देन ग्रो दिस गार्डन. नाचना जाने आंगन टेढ़ा तो नहीं चलेगा. आपकी क्वालिफिकेशन है, फाइन, उससे तो तनख्वाह मिल गई, फाइन, पर पैशन से करने आया, तनख्वाह लेने आया, इन स्टाफ मेंबरों को खुश करने आया, दे आर जस्ट नथिंग, ये कल चेंज हो जाएंगे, तेरे को तेरी आदत पड़ जाएगी. एक पत्नी अपने पति को बोलती है, हर टाइम शराब पीते हो, और जब भी शराब पी के आते हो मैं तुमको इतनी गालियां निकालती हूं, फिर भी पता नहीं तुमको कुछ समझ ही नहीं आती है कि मैं शराब छोड़ दूं, शराब छोड़ दूं, शराब छोड़ दूं. तो एक दिन बाई चांस वो शराब पीकर नहीं आया था, आज वो नशे में नहीं है, और अंदर घुसते ही अपनी आदत से फिर शुरू हो गई, मुस्टंडा आ गया, फिर मेरे से पता नहीं क्या क्या उसने उसको गालियां निकाली. गालियां निकालने के बाद जब वो उसके नजदीक आया, बोलता है, मैं तो एक दिन शराब छोड़ दूंगा, तू ध्यान कर, तेरे को जो जबान पे आदत पड़ जाएगी ये नहीं छूटेगी. अब हमको आदत पड़ गई, हमने तो हर किसी को चारों तरफ गुस्से से बोलना है, चौकीदार, घंटी बजाने वाला, चपड़ासी, जमादारनी, और हर बच्चे, हर स्टाफ वाले बच्चे. अमेरिका में हम रहते हैं तो मैं अपने ब्रदर से पूछता हूं, यू गॉट सो मच बिग बिजनेस एंड हाउ कम यू नेवर टॉक अबाउट बिजनेस व्हेन वी आर एट होम. बोलता है, ये अमेरिकन्स में बहुत पॉपुलर है, अपने घर में बिजनेस को मत लेके आओ, डोंट टॉक अबाउट योर बिजनेस एट होम. और जो लोग बिजनेस की बातें करते हैं, घर घुसे, आओ आज पिज्जा खाएंगे, क्यों, डील मिली है, प्रॉफिट हुआ, आज घर में रोटी नहीं पकेगी, लाइट भी नहीं जलेगी, पता क्या घाटा हो गया, घर में बिजनेस लेके आए ना. तो मुझे क्षमा करना, अगर हम अपने घर में अपना प्रोफेशन लेके जाते हैं तो उसका नुकसान होगा. आप लोग टीचर है ना, घर में टीचर ही मत लेके जाना. अगर जाते हैं तो वो शराबी पत्नी की तरह वो आदत वहां भी चली जाएगी, बहुत नुकसान होगा. जब मैं इंडिया में आता हूं, पार्क में सैर करता हूं और नंगे पैर करता हूं, सो वन लेडी केम, सिद्धार्थ जी मैंने सुना आप अमेरिका से आए हैं और आप घास के ऊपर नंगे पैर चल रहे हैं, मालूम है इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. फाइनली आई केम टू नो दैट दिस लेडी वाज टीचर. तो जो एक बच्चा है, हम उसे प्यार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, उसके पास पैशनेटली, पूरे पैशन से बैठ के सिंपथी शो नहीं करनी, एम्पथेटिकली उसके पास, उसके इस तरीके से उसको रियलाइज करे, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है. हम बोलते हैं, नहीं तू बिल्कुल नकम्मा है, पता नहीं कौन से पेरेंट्स के वहां से आया है, पता नहीं तेरी मत मारी गई है, बिल्कुल डमी है, पता नहीं हायर अथॉरिटीज यहां पर ऐसे बच्चों को क्यों ले लेती हैं, दिस एंड दैट. तो उनको प्यार से बात करके सिखाया जा सकता है, उसको बोले तुम्हारे में और दूसरे स्टूडेंट्स में कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगे कि तुम्हारे ट्यूशन लगा देंगे, ये नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ, या मुझे किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, करा देंगे, तुमको ठीक हो जाएगा, फाइन, डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस बोल रही है, जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, घर में मम्मी पापा या टीचर स्कूल में समझ नहीं आ रही, देख इसका ये मीनिंग होता है, देख ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उसको गुस्से में बिल्कुल लिसनिंग बंद हो चुकी हुई है, उसको समझ में नहीं आ रही है. नाउ ओनली लिसनिंग ओपन करने का एक ही तरीका है, वार्मथ, छाती से जोड़ लो ना, हग खोल लो ना, कलावे में ले लो ना, प्यार कर लो ना, करते ही लिसनिंग खुल जाएगी. जो ही लिसनिंग खुलेगी ना, उसको समझ आना शुरू हो जाएगा. पर क्या हमने ठेका उठाया हुआ कि सबको सब कुछ पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाना है, जो मैथमेटिक्स से लेके दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट्स, इसमें से 90% बाद में काम नहीं आते हैं. जितने मिनिस्टर्स हैं सारे सब कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी भी ये बात कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज ऑनेस्ट, क्या काम आया, 14 पीएचडी या ऑनेस्टी? अगर ऑनेस्टी ना हो तो पूरे देश को बेच देगा, तो हम सारे बिक जाएंगे। और हम सारे ये सोच ही नहीं रहे कि हम पेड़ का कोई भी पार्ट है, लेकिन हम तो सोच रहे हैं नहीं हम तो टहनियां हैं, नहीं तो हम तो फ्रूट हैं, नहीं हम तो फ्लावर हैं, हम तो तना है, हमारे बिना नहीं हो सकता, नहीं हम तो जड़े हैं, हमारे बिना नहीं हो सकता, ये सोच रहे हैं, ये नहीं पता पूरा पेड़ अफेक्ट होगा। तो हम भी इसके विक्टिम हैं। अगर हम बच्चों के साथ प्यार से हैंडल नहीं कर रहे, मालूम नहीं कि किस बच्चे को हमने ठिट किया, इंसर्ट किया, इंफीरियर फील कराया, उसका पढ़ाई से मन उठ गया और वो स्कूल जाना नहीं चाहता और घर में बोल रहा है कि मम्मी टीचर बहुत गुस्सा करती है, मैं नहीं जाना चाहता, साइकिक प्रॉब्लम उसको हो गई है, और उसके बाद उसके पास एक ही चांस बना है कि अत्तवादी बनो, अब आप सब बिक गए, क्योंकि जितनी कमाई की है वो आपकी अत्तवादी से बचने के लिए, सिक्योरिटी में टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और जहां जहां जाओगे जान खतरे में है। मालूम नहीं ये अत्तवादी क्रिएट कब हुआ, किस दिन, जिस दिन आपने उसकी उंगली छोड़ी। Am I right? तो प्यार कर लो ना, किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है आप सिलेबस खत्म करें। सिलेबस खत्म हुआ के नहीं हुआ, अगर इसके ऊपर फोकस करने की बजाय प्यार करना शुरू कर दे, सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहे तो आई टेल यू ये वाला सिलेबस डबल हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वो वाली किताबें बेचनी है वो आपको ऐसे ऐसे माल डालते रहेंगे, ऐसे ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट और हैवी करते जाएंगे, तो उस टाइम आप दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे, तो आपका ग्रैंड चिल्ड्रन आके घर रोएगा, और आपका ग्रेट ग्रैंड चाहिए, किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो, किसको दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है, स्पीड इज मेंटेन्ड, एम आई राइट? तो अब स्पीड को ना रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कोई तरीका अपनाना पड़ेगा कि डायरेक्शन मिले। डायरेक्शन एक ही है विच इज नॉट बींग यूज, क्या? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्म सीख ले, निर्मल कर्म शेयर किया कर, निर्मल कर्म। अगर तू टीचर है, अगर तू डॉक्टर है तो डॉक्टरी प्रयार से कर ना, फीटिसाइड किलिंग मत कर, किडनी मत बेच, एबॉर्शन मत कर, ऑर्गन्स मत बेच। इसको बोलते हैं कि डॉक्टर ट्रू रिलीजन जी रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, निर्मल कर्म कर रहा है। अगर टीचर है पैशन से करे ना, जितने डॉक्टर हैं वो जान के अगर किसी बढ़िया हॉस्पिटल में, फॉर एग्जांपल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम ले लीजिए, उसमें वो जॉब करता है, वहां पर तो वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता है, लेकिन वहां पर बोलता है ठीक है आप मुझको मेरे प्राइवेट क्लिनिक में मिलना। क्यों? क्योंकि यहां तो उसको तनख्वाह मिलती है, प्राइवेट क्लिनिक में इसी बात के वो आपसे 500 या 1000 रुपया उगरा सकता है। एम आई राइट? तो हम भी तो टीचर हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं, यहां पर कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास आना अलग ट्यूशन लेंगे। जब आपके साथ या ऑडियंस के साथ कहीं भी स्टेज पर मैं खड़ा होता हूं तो मैं सोचता हूं ये वर्ल्ड कप होने वाला है, फाइन लेट अस स्टार्ट, 90 मिनट की सॉकर शुरू करो, आई वॉज राइट आउट प्लेयर इन इंडिया, चलो अब सॉकर शुरू हुआ, अब दिल से पूरी तरह से खेलो। ये जो अभी टेस्ट मैच शुरू हुआ, इससे पहले इंडिया 11 या किसी साउथ इंडिया या किसी और से खेला जाता है, वो 3 दिन का होता है, वो प्रॉपर टेस्ट मैच या वनडे इंटरनेशनल नहीं होता है, पर तब भी क्या टीमें ढीले से बॉल फेंकती हैं, तब भी क्या शॉट मारने वाला यार कौन सा अखबार में आना है, इसका क्या इनाम मिला, नो दे जस्ट प्ले प्रॉपरली। तो आप जब आए हैं ना तो ये आपका टेस्ट मैच शुरू हो गया, ये आपका वर्ल्ड कप शुरू हो गया, इसको पूरे पैशन से खेलो। जब पैशन से खेलते हैं ना, खेलते टाइम बड़ा मजा आता है, उसके यहां पर फ्रॉन्स नहीं बनते हैं, उसकी त्योड़ी नहीं चढ़ती है, उसको गुस्सा नहीं चढ़ता है, वो प्यार से करता है, वो एंजॉय करता है। लेकिन टीचरों को एक आदत पड़ गई है, जो प्रैक्टिकल आदत को मैंने आपके ऊपर अप्लाई करके लगाने की कोशिश की है, पर आप में से कईयों को नहीं होगी। न्यूयॉर्क में हमारा सुपरमार्केट स्टोर है, उसमें कितने अमेरिकन गोरे गोरियां काम करते हैं। एक लड़की किसी बड़े अमीर जूश की बेटी थी, और उसको उसके बाप ने बोला ये लोग इंडिया से आए हैं पर ये बड़ी मेहनत से काम करते हैं, इनसे ना काम सीखना चाहिए, दे आर रियली जीनियस, ये टाइम की परवाह नहीं करते हैं। अमेरिका में जितने भी लोग हमारे को काउंटर पे आके बोलते हैं इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट डॉक्टर्स, आई ऑलवेज लव टू हैव इंडियन डॉक्टर व्हेन आई एम इन द हॉस्पिटल, यू नो ही डज नॉट लुक एट हिज वॉच, अगर 8 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होगी और उसको कोई बोले कि ये बीमार है तो वो बड़े पैशन से देखने लगता है, क्यों, ये उसके ब्लड में है, वहां पर हमारा नोज अप हो जाता है, हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि कैसे इंडियन डॉक्टर को ऐसे अप्रिशिएट करते हैं। तो जब हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर किसी बच्चे का दिल हम जीत लेते हैं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट विनिंग लूजिंग राइट, दिल विनिंग के टाइम पर अगर हम जीत लेते हैं वो बच्चा सारी उम्र के लिए हमें याद रखता है, उसके पेरेंट्स भी याद रखते हैं कौन से स्कूल में पढ़ा था, एक बार ना ये तो बीमार भी हो गया था, एग्जाम भी नहीं दे सकता था, पर इसकी टीचर ग्रेट थी, था जिसने इसको प्यार किया, उस टाइम उसने इसको खड़ा कर लिया, और फिर ये तब से ना पीछे मुड़कर नहीं देखा हमारे बच्चे, उस टीचर का बहुत इसमें योगदान है, वो सारी उम्र याद रखते हैं। लेकिन आजकल टीचर की तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्यों, टीचर सोचे ना, अगर राजनीतिक लोगों को हम पॉइंट आउट करते रहे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन राजनीतिकों में सबका ही नाम बर्बाद हुआ हुआ है, सारे ऐसे हैं, तो जो अपने आप को राजनीतिकों का जो छवि बन गई है उसको ठीक करना चाहता है तो वो अपने आप को ठीक करेगा, अगर टीचर लोगों की छवि गलत बन गई है तो आप लोग ठीक करेंगे ना, तो कहीं तो शुरू होगा ना, कहीं तो शुरू करेंगे। तो मैं अपने मदर से सुबह बात कर रहा था, तो उन्होंने एक शेर मेरे को समझाया कि यू कैन शेयर विद देम, न जाने क्या कहा जाती हुई लहरों को साहिल ने, न जाने क्या कहा जाती हुई लहरों को साहिल ने, साहिल किनारा, किनारे ने, लहरें आज तक साहिल पे अपना सर पटकती है, बार बार आती है ना, इजंट इट, लहर बार बार आती है, आपके 12th ग्रेड का स्टूडेंट बार बार नहीं आएगा पहली से लेके 12th तक, पर उस लहरों की तरह बार बार उसका और उसके पेरेंट्स का सर आपसे टकराता ही रहेगा, इन पॉजिटिव सेंस, आप ऐसे हार्ट को विनिंग लूजिंग एंड देन शेयरिंग, शेयरिंग में मुझे एक बात याद आती है सोक्रेटिस की, सोक्रेटिस जब बचपन में था ओवर कॉन्फिडेंट था राइट, बच्चे भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं, अभी कुछ भी नहीं जानते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि टीचर के पास हर किस्म की डिग्री है, सब कुछ जानती है, वो भी जानता है, वो भी ओवर कॉन्फिडेंट है कि मुझे सब कुछ पता लग गया, एंड क्लोज्ड, मोनोटनस लाइफ हो गई, अब कुछ भी नहीं सीखना चाहता। कोई भी बच्चा अगर कुछ कहना चाहे, सोक्रेटिस का ये सीन तो मशहूर है ना, कि जब एक बच्चा दीपक लेके आ रहा था तो सोक्रेटिस ने पूछा, सब आप जानते हैं ये कहानियां, सोक्रेटिस ने पूछा चलो इसके ऊपर ज्ञान झाड़े, ये दीपक जो जल रहा है मालूम है ये रोशनी कहां से आई, तो बच्चे ने इमीडिएटली फूक मारकर बुझा दी और बोला सर पहले आप बताओ कहां गई, अगर कहां गई आपको पता है तो मैं बता दूंगा कहां से आई। इसका मतलब कोई भी दुनिया का इंसान सब कुछ नहीं जानता है, टीचर भी नहीं जानती है, जानता है, जेंडर को बीच में से निकालते हैं, टीचर डज नॉट नो एट ऑल, सिर्फ अपनी पढ़ाई किया, पढ़ाई के बेस में तो जॉब मिल गई, उसकी तो सैलरी मिलती है। अब क्या हम प्रूव कर रहे हैं, कौन से फ्लावर बना रहे हैं? अभी तो ये छोटे छोटे बड्स हैं, तो इन बड्स को हम फ्लावर कब बनाएंगे? क्या फ्लावर बनने से पहले ही इनके अंदर से फ्रेग्रेंस खत्म कर देंगे? बहुत ज्यादा ब्लेम आ रहा है कि इंडियन टीचर बच्चों को गुस्सा करते हैं, पनिश करते हैं, मीडिया में आ रहा ना बहुत कुछ। उसको देखने के बाद पता है क्या टीचरों ने क्या किया? मोस्ट ऑफ द जितने वर्ल्ड वाइड मैं जाता हूं उसमें से इंडिया के स्कूलों में टीचरों को देखता हूं तो टीचर बोलते हैं अजी यहां पर बच्चे को कुछ भी करने के लिए पहले तो उसके मम्मी पापा हमारी जान खा जाते हैं, फिर मीडिया वाले हमारे को उछाल देते हैं। हमने तो अपना सोचा हुआ चुपचाप, चाहे कोई इंटेलिजेंट है या नहीं, अपना सिलेबस खत्म करो और बस खत्म। ये हमने कौन सी आदत पकड़ ली? विद्या विचारी। तब पर उपकारी नहीं हुए हम, पर उपकारी नहीं है, अब तो सिर्फ हमारी तनख्वाह की जरूरत रह गई है। We are only concerned about our career, तनख्वाह। कैसा हो गया ये सब कुछ, क्यों बिगड़ गया ये सब कुछ? अब तो जरूर इसके बारे में आप लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी भारत की आने वाली जनरेशन है, या पिछली का तो कुछ नहीं कर सकते, आने वाली जो जनरेशन है उनकी ग्रूमिंग आपके हाथ में है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जो पहले शेयर कर चुका हूं, पेरेंट्स ने आपके ऊपर थ्रो कर दिया, फेंक दिया, जो आपके स्टाफ के हेड हैं उनके उनकी लिमिटेशंस हैं, उनको ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफी सख्ती है, वो अपनी सख्ती करते हैं, लेकिन उनके ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रेशर्स हैं वो उस प्रेशर को आपके ऊपर निकालते हैं। आपका प्रेशर कहां जाए? घर में सास है वहां निकलता नहीं, पति है वहां पर निकलता नहीं, पत्नी है वहां पर नहीं निकलता, तो आपका सारा प्रेशर भी बच्चों के ऊपर निकलता है। लेकिन बच्चे इसके विक्टिम क्यों हैं? क्योंकि वो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास बीएड और एमएड की डिग्रियां नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उनको नाक पहुंचना नहीं आता, क्योंकि उनको मैनर्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके वाले सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं, उनको पता नहीं था कि अमेरिका या लंदन से किसी ने कोई एक सब्जेक्ट सपने में आया था, लिख दिया और मुझे जरूर आना चाहिए। Why? इतना डंडा लेके मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? अभी न्यूयॉर्क में एक मिस्टर सिंह डॉक्टर हैं और मेरे को बोले हमारा बेटा 10th में है और हमसे रूठ गया, घर से जाना चाहता है, क्या करें, हॉस्टल में रहना चाहता है। अरे स्कूलिंग के टाइम हॉस्टल में क्यों रहना चाहता है? बोला मेरी वाइफ से बात कर लो, वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने उसको पूछा बच्चे को पेट में कितने दिन रखते हैं? 9 महीने। मैंने कहा 9 महीने आपने रखा और आपका हस्बैंड बता रहा है कि आप अपने बच्चे को मारते हैं, क्यों? पढ़ता नहीं है। वीर जी देखो अमेरिका में आके यहां पर हायर एजुकेशन लेगा तो कब करेगा, पढ़ता नहीं है। अमेरिका इज नोन, दुनिया इतनी दूर दूर से बर्तन बेच के जमीने बेच के पढ़ने आती है, पढ़ता नहीं है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, एक बंदे को सपना आया कि 2 से 13 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, पर उसको कैसे लिखना चाहिए, कैसी पिक्चर बनानी चाहिए, उसने एक किताब बनाई, किसी से मिलकर किताब लगवा दी, अब उस बंदे का सपना आप पूरा कर रहे हो, अपने बच्चे को मार के। मुझे हैरानगी हो रही है कि बायोलॉजिकल मदर होने के बावजूद आपने अपने बच्चे को मारा, क्यों मारा? पास कराना चाहते हो, सिर्फ यही सिखाना चाहते हो जो किताब उसको लगा दी है बस, पर यह पढ़ जाएगा, पर आपसे पढ़ने के बाद आपसे जो दूरी पड़ जाएगी उसका क्या करोगे? तो ये प्यार कब सीखेंगे हम? देखो मेरा एक बार ये लेक्चर आपसे शेयरिंग में ना, आपको बहुत सारे मेरे नेगेटिव्स भी मिल जाएंगे जो आप बाद में स्टाफ में बैठ के बात करेंगे। बड़ा आया था लेक्चर देने, एक बार या कोई बच्चों को आके देखे ना, बच्चे इतना शोर मचाते हैं, सिलेबस पूरा नहीं होता, जॉब चली जाती, ये तो आप कर लेंगे बाद में, पर मेरी इंटेंशंस को प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं अपनी इंटेंशंस जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसका एक ही गोल है, वो गोल है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जैसे सोक्रेटिस बोलता था बचपन में, मुझे सब कुछ मालूम है, ओवर कॉन्फिडेंट है, और जब थोड़ा बड़ा हुआ आफ्टर 20s or 25 or 30s तो जाके बोलता है आई नीड टू नो मोर, लेकिन जब और बड़ा हुआ तो कहता हूं माई गॉड देर इज लॉट मोर टू अंडरस्टैंड, इन्फिनिट समान है समझने के लिए और नॉलेज लेने के लिए। तो हम तो डिग्री लेने के बाद जॉब मिल चुकी है, हायर अथॉरिटीज खुश हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स पूरे हैं, सिलेबस पूरा हो जाता है, पेरेंट्स की मेरे तरफ कोई उंगली नहीं आ रही है, मेरे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, मेरी क्लास का अच्छा है, एंड फाइन। इसके बाद हम क्यों क्लोज हो गए? अगर हम ये पढ़ना शुरू करें कि बच्चा ऐसे नहीं मानता तो कैसे करना है, ऐसे नहीं मानता तो कैसे करना है, ऐसे नहीं मानता तो कैसे करना है, माँ जानती है ना कि अगर मेरा बच्चा सीधा सीधा बेसन का पूड़ा नहीं खाता है पर इसको अंडा पसंद है, तो मेरी मदर मेरे को बोलती है जब मैंने देखा ये अंडा नहीं खाता है और इसको बेसन का पूड़ा नहीं पसंद पर अंडा पसंद है, पर मैं इसके अंदर सिर्फ अंडा नहीं डालना चाहती तो मैं इसके अंदर कुछ डालना चाहती हूँ, तो उसने क्या किया, उसने आटे के अंदर अंडे को मिक्स किया, पूड़े की शक्ल में बना दिया, न्यूट्रिएंट्स पूरे दे दिए, उसमें से हमको अंडे की स्मेल आई, हाँ अच्छा लग रहा है चलो, पर जो कुछ वो देना चाहती थी वो दे दिया। ऐसे मदर करती है, हम मदर सारे क्यों नहीं बन जाते? अगर मदर वाला प्यार हम सारे, चाहे मेल हैं फीमेल हैं जो मर्जी हैं, प्रिंसिपल हैं वाइस प्रिंसिपल हैं टीचर हैं जिस मर्जी क्लास को पढ़ाते हैं, अगर हम ये काम शुरू कर दें, बड़ा नाइसली अपना रास्ता ढूंढे कि इस बच्चे को कैसे किया जा सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिलेबस को कैसे किया जा सकता है, इन सब अगर आप लोग हमारा साथ देना शुरू कर दें तो यस वी आर प्रिपेयर्ड टू खड़काओ दरवाजा एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कैसे करना चाहिए, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग। अभी पीछे 3-4 साल पहले मैं यहां पर बात करता था कि 10th का बोर्ड अगर खत्म कर दिया जाए, 12th का बोर्ड खत्म हो गया, और रिसेंटली आई केम टू नो इजंट इट 10th का बोर्ड खत्म हो गया ना, ऐसे ही बच्चों के दिमाग में डाले हुए हैं, कितने लोगों को डायरिया हो जाता है, कितने लोग पागल हो जाते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनों का रिश्ता छूट जाता है, कितने सुसाइड कर लेते हैं। पर अगर हम ये सीखेंगे नहीं कि इसका वे आउट क्या है तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। सो गोल क्या होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए, बच्चों को वैल्यू सिस्टम कैसे इंजेक्ट कर दूं मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते, पर मैं उन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको स्पार्क कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सबके अंदर प्यार है, प्यार आप बांट सकते हैं, प्यार आप यूज कर सकते हैं, प्यार आप बच्चों को दे सकते हैं, ये गेम सिर्फ प्यार से बदल सकती है, और इसका एक ही एक एम होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मैं अपना आदत को बिगड़ने ना दूं। आई शुड डिस्पेंस दिस मैसेज, आई शुड डिलीवर दिस मैसेज विद फुल पैशन एंड लव एंड वार्म्थ। इसीलिए हम लैंग्वेज में बात करते हैं, जब बोले कैसे, बात कैसे करें, एक दूसरे से बिहेव कैसे करें, तो उसके बारे में एक एक्सरसाइज हमेशा करते हैं हम। एक इंसान कार चला रहा है, साथ में उसका दूसरा साथी बैठा है, और कार चलाते चलाते सड़क के ऊपर बड़े सारे डंकी खोते गधे जितने भी ढेर सारे आ गए, ट्रैफिक जैम हो गया, और इसने अपनी कार का शीशा नीचे किया, खोते भाई साहब, खोते अंकल, खोते शाहजी, प्लीज जल्दी निकल जाओ, हमें जाना है। जो इधर बैठा था बोलता है, बड़ा मुंह बना बना के बोल रहा है, खोते को तेरी लैंग्वेज आती है? खोते कोई भी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, बड़ा ऐसे ऐसे बना के बोल रहा है। तो वो बोलता है, मुझे मालूम है कि खोतों को हमारी इंसानों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, पर मैं तो ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूं कि डिफिकल्ट टाइम्स में जब कुछ ऐसे हो तो मेरी आदत ना बिगड़ जाए। तो आपको डिग्री लेने के बाद आदत बिगाड़ने का टाइम आ गया। बच्चे हमेशा शरारत करेंगे, पढ़ के नहीं आएंगे, पेरेंट्स आपके अगेंस्ट शिकायत करेंगे, तो आपने तो मुसीबत मोल ले ली। हां, लेकिन आपके बदले में यहां पर रिक्शा पुलर जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है वो भी पढ़ाने आ सकता है, कोई फर्क है? जो आपने एजुकेशन ली है, पर उस एजुकेशन में से एक मॉरल बस ये निकालना था, मैंने एजुकेशन इसलिए लिया क्योंकि मैं टीचर बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टीच देम, आई वॉन्टेड टू ग्रो समथिंग आउट ऑफ देम, चिजल देम, मैं उनकी पॉलिश करने के लिए आया था। लेकिन यहां आके मैंने देखा बड़ा कंपटीशन है, सब ऐसे हैं, सबकी तरह बना दिया। आपको जगह जगह आपकी ईगो को ना लोग बर्बाद करेंगे, ईगो को तोड़ने की कोशिश करेंगे और टूटेगी, क्योंकि हर हर टाइम ऐसे होता रहेगा। जमाना जो मर्जी आ जाए, जितना टेक्नो सेवी वर्ड आ जाए, ये सब कुछ होगा, लेकिन आपकी जगह रोबोट भी ले सकता है। वो दिन दूर नहीं, और वो काफी हद तक शुरू हो गया है कि क्लास में सिर्फ एक प्रिंसिपल अपने रूम से हर क्लास में टीवी से टीचर का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सकेगा, तो आपकी जॉब इनसिक्योर हो जाएगी या आपके आने वाले बच्चों की इनसिक्योर हो जाएगी, ये टीचरी जॉब खत्म भी हो सकती है। पर टीचर को वहां क्यों खड़ा किया? वार्मथ देने के लिए, जप्फी डालने के लिए, प्यार की आंखें देने के लिए, अपना जेस्चर देने के लिए, डिग्री देने के लिए नहीं, सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं, तनख्वाह ज्यादा कराने के लिए नहीं, प्रमोशन लेने के लिए नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको अगर प्रमोशन ना मिले, प्रमोशन से ज्यादा 2 या 5 या 10 हजार रुपए आपके ज्यादा हो जाएंगे, पेंशन में फर्क पड़ जाएगा, और आपको बोनस नहीं मिला उससे ज्यादा आपको 3 महीने की सैलरी मिल जाएगी, लेकिन वो जाएगी ज्वेलरी में, वो जाएगी फिक्स डिपॉजिट में, आप यही 2 रोटियां खाएंगे, जिसके लिए क्रूअल बनना पड़ रहा है, इतने दुखी हो रहे हैं, नहीं मिला बोनस, सो व्हाट, सिस्टम में कहीं गड़बड़ है। यही गड़बड़ वाले स्टूडेंट मैं आगे और तैयार कर रही हूं, ये तो सब जगह होता ही रहेगा। सो लेट मी डू माई दिस पैशनेट, जो मेरा पैशन है, मेरे को पैशन का काम करने दो, सिस्टम आस्ता आस्ता ठीक होगा। हाँ, एट प्रेजेंट ये जो हम यहां से कन्वे कर रहे हैं, उसमें अगर हम प्यार देना शुरू कर दें, तो इस ओशन में सारे बह जाएंगे, आई एम श्योर। इस ओशन का तूफान हम क्यों नहीं ला सकते हैं, जब इतना अनलिमिटेड एबंडेंस ऑफ दिस लव इज देयर, अवेलेबल देयर इन आवर हार्ट्स, पर हम उसको लॉक करके क्यों बैठे हैं? क्या हमको लॉ ही चाहिए कि लॉ बोलेगा गुस्सा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? हमने तो फिर सब कुछ छोड़ दिया। मुझको अचानक हमारे न्यूयॉर्क में वहां पर पोस्ट ऑफिस की बात याद आई, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी आई, एक क्लर्क की ड्यूटी है चिट्ठियों को असॉर्ट करता है, और असॉर्ट करते टाइम देखता है सेंडर्स नेम और एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं। तो उसने देखा एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस इज प्रॉपरली रिटर्न, पर यहां पर जिसको भेजी है वहां पर लिखा था टू दी गॉड। ये क्लर्क ने सारे ऑफिस वालों के साथ शेयर किया, उनको दिखाया, इसमें लिखा है गॉड, इस चिट्ठी का क्या करें? फाइनली दे सेड इस चिट्ठी को जो सेंडर्स एड्रेस है उसमें वापस भेजा जाए, वहां पर कहा जाए कि नया एड्रेस लिख दो। पर उन्होंने फिर बातचीत करते हुए बोला, यार उन्होंने पर्पजली लिखा है गॉड, गॉड का तो कोई एड्रेस नहीं होता, अब क्या करें? चलो खोल लेते हैं। एनवेलप खोला, उसमें चिट्ठी लगी थी, माई डियर गॉड, 3 हफ्ते के बाद क्रिसमस आ रहा है, मैं विडो हूं, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर रहती हूं, और मेरे सिस्टर और उसका हस्बैंड कैलिफोर्निया से आ रहे हैं, मैंने उनको गिफ्ट भी देने हैं, मेरे पास इतनी मनी नहीं है, मैंने उनको खाना भी खिलाना है, इतने पैसे नहीं है, काइंडली सेंड मी $100 ओनली फॉर दिस पर्पज। तो इन सब ने सोचा बेचारी गरीब है, क्रिसमस मनाना है, सब ने मिलके अपनी पॉकेट से थोड़ा थोड़ा शेयर करने के लिए उसके एनवलप में डॉलर्स डाले। फाइनली दे फाउंड टोटल नंबर ऑफ डॉलर्स वाज $96। एनवलप बंद किया, सेंडर से एड्रेस पे मेल कर दिया। 4-5 हफ्तों के बाद, क्रिसमस जाने के 1-2 हफ्ते के बाद लेटर फिर आया, अगेन सेम सेंडर्स एड्रेस टू दी गॉड, थैंक यू वेरी मच गॉड, आपने मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे $100 की डिमांड थी, जरूरत थी, आपने डॉलर भेजे, यू आर सो काइंड, सो ग्रेट, बट यू नो व्हाट हैपेंड, आपने मुझे $100 भेजे होंगे पर पोस्ट ऑफिस वालों ने $4 निकाला। तब से पोस्ट ऑफिस वालों ने किसी को भी कंट्रीब्यूट करना छोड़ दिया। ये काइंड हार्ट, परोपकारी, प्यार करने का, दया करने का आदत हम सब ने तब से छोड़ दी, जब कभी हमें कोई तुम क्यों ग्रेट बड़े बन रहे हो, मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी, ये तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम भी तो ये कर सकते हैं। ज्यादा अपने आपको गुड बुक्स में लाने की जरूरत नहीं है, बहुत मत बनो। तुम कल आए हो, हम यहां से 10 साल से स्कूल में रहते हैं, यहां कुछ नहीं चेंज हो सकता। तो हम सबने ग्रेट पॉइंट्स को करना छोड़ दिया, क्योंकि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट ग्रेट पॉइंट्स पे करते ही नहीं है। जो ग्रेट करे उसकी लैग पुलिंग करते ही है, है ना। पढ़े लिखे होके डिग्रियां लेने के बाद दुनिया को पढ़ाने वाले लोग भी ये करते हैं। ओहो, पैसे की दुनिया में सुना था, बिजनेस की दुनिया में सुना था, कंपटीशन की दुनिया में सुना था, टीचर लोग भी करते हैं ऐसे। डिग्रियां ली हैं इतनी मुश्किल से, पढ़ाने का प्रोफेशन चूज किया है इतनी मुश्किल से, यहां पर बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं, कितनी इंटरव्यूज ली जाती हैं। जब अभी मम्मी प्लान करती है कि बच्चा कंसीव करे या ना करे, तो स्कूल चूज करना शुरू कर देते हैं, कितना मुश्किल है। और उसको जो पढ़ाएंगे वो लोग ऐसे एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, वो लोग प्यार नहीं करते हैं, वो लोग दूसरे का भला इसलिए नहीं करना चाहते कि लोग कहेंगे इसका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा। अगर हम काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, रिवार्ड के बिना काम करना शुरू करें, दिस पैशन स्टार्ट्स, आपका पैराशूट खुल गया। पर एक ही शर्त रहेगी, मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए, कोई हायर अथॉरिटी से मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब लोगों से कोई वाहवा नहीं चाहिए, अगर वाहवा कर दे तो फाइन। लेकिन हम सब ने क्या करना शुरू कर दिया, अगर वाहवा कर रहे हो तो मैं ग्रेट करूंगा, लेकिन उसका मेरे को रिवार्ड चाहिए। लेकिन लोग बुरा भला कहेंगे, इसलिए हम सब ने ये सब कुछ करना छोड़ दिया। बट वाई कैन नॉट वी बी डेफ। आपको मालूम है फ्रॉग्स की स्टोरी, कि एक बारी सारे फ्रॉग्स ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि हम कुतुब मीनार पर चढ़ेंगे, और जैसे मैराथन होता है ऐसे पूरा मीडिया खड़ा है, सारी दुनिया देख रही है, चारों तरफ जैम पैक है, बिल्कुल सारे बॉर्डर्स पे और सब फुटपाथ पे लोग खड़े हैं, देख रहे हैं ये फ्रॉग्स कुतुब मीनार चढ़ेंगे। तो बोलते गए अब ये दो जंप करते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं, कितने हजारों साल लगेंगे, और अगर ये कुतुब मीनार वर्टिकल ऐसे है उस पर जब चढ़ेंगे, 5 फुट जंप करेंगे, 3 फुट नीचे गिर जाएंगे या 6 फुट नीचे गिर जाएंगे, कैसे ये चढ़ेंगे। फाइनली दे फाउंड कि सारे फ्रॉग ये बात सुनते गए रुकते गए, एक फ्रॉग चढ़ गया, एंड दे फाउंड पूरा मीडिया एंड द होल पब्लिक इज स्टंड टू सी दिस मिरेकल कि एक फ्रॉग कुतुब मीनार के टॉप पे चढ़ गया। तो जब वो उसे बात करने गए, पूछने गए तुम कैसे चढ़े, तुमने कौन सी प्रैक्टिस की है, कितने दिन प्रैक्टिस की थी, कैसे जंप करते थे, तो उनको पता लगा दिस फ्रॉग इज डेफ। वो डेफ था, उसने पब्लिक की कोई बात ही नहीं सुनी, उसके कान में कोई भी नेगेटिव और लेग पुलिंग्स की बात आई नहीं, भागता गया और चढ़ गया। ऐसे हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं ये सीख सकते कि मुझे किसी की, हाँ पर मुझे बुली नहीं बनना है, मैं बुली करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो बुली करते हैं वो हमेशा दूसरे के लेवल को गिराते हैं, उसकी एस्टीम को गिराते हैं, उसको अच्छे काम से रोकते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं। फाइनली वो भी पोस्ट ऑफिस वालों की तरह से आखिर में इस काम को छोड़ देता और मेन स्ट्रीम में आ जाता है, और मेन स्ट्रीम में तो हम सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं ना मेन स्ट्रीम में। जब ट्रैफिक जैम होगा फिर वो आपकी डिग्री नहीं देखेंगे कि ये टीचर है, इसके पास डिग्री है, ट्रैफिक जैम में से स्पेशल रास्ता निकाल दो। जब हार्ट अटैक होगा वो नहीं देखेंगे, ये टीचर है, इसने इतने साल पढ़ाया है, बहुत जोरदार डिग्री थी, हायर अथॉरिटीज भी बड़ी सेटिस्फाइड थी, बड़े बच्चों को पढ़ाया जो गोल्ड मेडल ले गए, इसका पढ़ाया हुआ बोर्ड में बस बेस्ट आता था। नोबडी विल फेवर देयर, देयर यू आर इन मेन स्ट्रीम, यू आर काउंटेड जस्ट कॉमन मैन, एम आई राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे मेन स्ट्रीम में आते जा रहे हैं, सब एक दूसरे को एक जैसे लग रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का पढ़ा हुआ पीएचडी प्रोफेसर एक बारी बॉम्बे ट्रेन में गया, और बॉम्बे ट्रेन में जाते हुए उसको मालूम हुआ यहां से 10 बॉगी पीछे वहां पर पेंट्री है जहां से खाना मिलेगा। सो ही गॉट अप खाना लेने गया, वहां पर जाके बोला मेन्यू लाओ, बहरा मेन्यू लाया और उससे देखने लगा। उसे याद आया, ओह माय गॉड, मेरी ऐनक मेरी सीट पर रह गई है। ही कुड नॉट रीड इट। इंग्लिश प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पढ़ा लिखा प्रोफेसर, बहरा सामने खड़ा है, अनपढ़। ये मेन्यू देख के उस बहरे को बोलता है, तुम देखकर इसको बताओ वो क्या क्या बना है। यू नो बहरा क्या बोला, सर आपकी तरह मैं भी नहीं पढ़ा हुआ, आपकी तरह। और वहां उसकी ईगो को जो चोट पड़ी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्यों मेन स्ट्रीम में आना चाहते हो? मेन स्ट्रीम में तो सब एक दूसरे को एक जैसा समझते हैं। वी हैव टू प्ले इट, वी हैव टू लिव इट, वी हैव टू डिलीवर दिस मैसेज। इसका फायदा फाइनली हमें ही होगा, पर इसको करते टाइम सेल्फलेस करना पड़ेगा। क्या मैंने आपको नई बात बताई कोई? क्या मैंने आपको कोई ज्ञान दिया? क्या मैंने आपको कुछ इंपोज किया? कर भी नहीं सकता, बिकॉज यू आर सो फुल्ली ट्यून्ड एंड क्लोज्ड नॉट टू लिसन। टीचर का ये एटीट्यूड है। अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आपको फुल्ली क्लोज्ड, बिल्कुल स्टील का बना हुआ जो लिसनिंग नहीं करने देता, अगर उसमें कहीं छेद है तो शायद सुनाई दे गया होगा। आई वुड हैव टच्ड योर हार्ट बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने कोई रिलीजन आपको नहीं पढ़ाया, मैंने कोई किताबची ज्ञान आपसे बातें नहीं की, मैंने सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लव को आपसे शेयर किया है, जिसको बोलते हैं विद्या विचारी तब परोपकारी। विद्या देनी नहीं है, विद्या पढ़ने के बाद परोपकारी हार्ट को क्रिएट करना है, और क्रिएट होते ही इंसान दूसरों में वो बांटना शुरू कर देता है, कैन नॉट स्टॉप, ओवरफ्लो करता है। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। साइकोलॉजिकली मैं आपकी इस टाइम जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको फील कर सकता हूं, और वो किस लेवल पर है उसको अंडर एस्टिमेट किए बिना ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर प्रिंसिपल साहब का या चेयरमैन का या हेडमिस्ट्रेस का आपको सर्कुलर ये जाए कि अगर आप ये वाला प्रोग्राम अटेंड करेंगे, करने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे को फर्स्ट ग्रेड से ट्वेल्थ ग्रेड तक 5% फ्री मार्क्स मिलेंगे, देन दिस स्टेट ऑफ माइंड इज क्वाइट डिफरेंट। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनमें से जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में मिलके यहां पर अटेंड करने नहीं आ सके हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पति ने बोला है आज क्या है स्कूल में मम्मी पापा की कोई मीटिंग है, तुम चले जाओ, मेरा बहुत जरूरी काम है, बिल क्लिंटन से मिलना है और बहुत करोड़ों की डील है। और बहुत सारों की वाइफ ने ये कहा होगा आप चले जाओ ना, हर बार सारा दिन और सारा हफ्ता और सारी जिंदगी बच्चे का ध्यान मैं रखती हूं, आप भी तो कभी चले जाओ। सो जो आप सब लोग टीचर से कहना चाहते हैं वो कल हमने इनको कहने का प्रयत्न किया था। वी ट्राइड अवर बेस्ट टू कन्वे द मैसेज बिकॉज आई लव टू शेयर विद स्टाफ, विद पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। इन सब के साथ मिलके जो एक इकट्ठा सेशन होना चाहिए। अब हम आज की बात यहां से शुरू करते हैं अगेन बिकॉज मिस्टर शरद चंद्रन इज प्रेजेंट एंड मिसिज वंदना एंड मिसिज गीता इज प्रेजेंट। मैं इनसे बात कर रहा था कि आपका स्टेट ऑफ माइंड इस टाइम क्या है, मैं उसको अंदाजा लगा सकता हूं। अंडर एस्टिमेट किए बिना ये बोलना चाहता हूं कि अगर मिस्टर शरद चंद्रन ने ये सर्कुलर आपको भेजा हो कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे और इसको घर में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड से ट्वेल्थ ग्रेड तक आपके बच्चे को 5% या फ्यू परसेंट फ्री मार्क्स मिलेंगे, तो आज आपका एंथुजियाज्म कुछ और होना था, इजंट इट? आई थिंक दिस गिमिक इज रिक्वायर्ड एंड दिस गिमिक इज टोटली एलिमिनेटेड, राइट? कैसे? डिविनिटी के 2% मार्क्स भी नहीं है, डिविनिटी का पीरियड 8वां पीरियड होता है, उसमें बच्चा घर भाग जाए नो प्रॉब्लम, नहीं आए नो प्रॉब्लम, नंबर आए ना आए, कौन से माने जाएंगे? ओनली इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, दिस एंड दैट, उनसे क्या बनेंगे आपके बच्चे? मशीन, रोबोट। ठीक बात समझ में नहीं आएगी? थ्री इडियट्स वाला चतुर तो बन जाएंगे, हाँ थ्री इडियट्स अब आई है, हम ये प्रोग्राम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाइयां करके या बिजनेस करके या किसी भी मेहनत को करने के बाद अपने करियर के इस जंक्चर पर पहुंचे होंगे कि जहां पर पहुंचने के बाद आपको एक स्पाउस ढूंढना पड़ा, स्पाउस के बाद स्पाउस के साथ शादी होते टाइम इतना खर्चा करना पड़ा, पूरी बिरादरी आई, फिर वहां से मैरिज के बाद आपको एक बच्चा प्राप्त हुआ, आपने बच्चे की एडमिशन के बारे में तब से सोचना शुरू किया जब अभी बच्चा कंसीव नहीं हुआ था, राइट? इट इज टू डिफिकल्ट टू गेट द एडमिशन, एम आई राइट? से लाउडली, राइट? कितना डिफिकल्ट है। और एडमिशन लेने के बाद हमने पता क्या सोच लिया? एक खुदा मिल गया है, एक करामात करने वाला जादूगर मिल गया, टीचर, अब सब कुछ स्कूल और टीचर के ऊपर छोड़ दो, जरा सी कोई गलत बात हो पूरा ब्लेम उनके ऊपर डाल दो। क्यों? बिकॉज वी आर क्रिएटर ऑफ दिस चाइल्ड, वी हैव फुल राइट्स टू क्लेम दिस, वी हैव फुल राइट्स टू ब्लेम द टीचर्स, बच्चा तुमने बिगाड़ा है, बच्चे का ध्यान तुम नहीं रखते, तुमने बच्चे को पढ़ाया नहीं, अरे बनाया हमने है ना, हमारे को क्या जरूरत है? हम तो ये बोलेंगे टीचर गलत है, एम आई राइट? वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। ज्यादातर पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि टीचर गलत है, स्कूल गलत है, प्रिंसिपल गलत है, सिस्टम गलत है, एजुकेशन सिस्टम गलत है। अब इसके जो बच्चे के क्रिएटर हम हैं, हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे के बारे में घर में क्या कर रहे हैं। जस्ट सी, एक गली की नुक्कड़ पे दो बच्चे छोटे छोटे तोतली भाषा में बोलने वाले आपस में लड़ रहे हैं, कोई मेरे जैसा इंसान उनके नजदीक से निकला, उसने देखा ये बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे बेटा लड़ते नहीं हैं। यू नो उन दोनों बच्चों ने क्या कहा? अंकल हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं, हम तो मम्मी पापा खेल रहे हैं। अच्छा मम्मी पापा लड़ते हैं? यस, ब्लेम स्कूल को देते हैं। सबसे पहली बात मम्मी पापा से शुरू होती है और पापा से भी पहले मम्मी से शुरू होती है। मम्मी जब बच्चे को कंसीव करती है, मम्मी का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो थॉट प्रोसेस है, उसका बच्चे के ऊपर इफेक्ट होता है। मुझे मालूम नहीं है आप में से कितनी मम्मी सिगरेट और शराब पीती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बच्चे के ऊपर होते हैं वो आप मेडिकली सब जानते हैं। हम आपसे आज कोई नई बात नहीं करेंगे, आपको कोई ज्ञान नहीं हम दे सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फुल, हम आपके अंदर कुछ भी इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, जस्ट फ्री स्टाइल रेसलिंग है, दो घूंसे आप मारिए, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे एक रिटेलिएट करना आता हुआ, अगर ना आता हुआ तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपने आप को बचाऊं, पर मुझे घूसा मारना नहीं आता, इट्स जस्ट फ्री स्टाइल बट ओनली डिफेंसिव। सो नाउ दिस गेम इज स्टार्टेड। आप लोग ने बच्चा पैदा किया, पर मम्मी को यह नहीं मालूम कि जब मम्मी के गर्भ में नौ महीने के लिए बच्चा है तो वो किसी को जब कुछ बोलती है ये बच्चे के दिमाग में स्टोर हो रहा है। मम्मी को जब पापा गाली निकाल के गुस्से से बोलता है, सास बुरा भला बोलती है, ये बच्चा सुन रहा है एंड स्टोरिंग इन द मेमोरी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, पर इस बात को इग्नोर किया गया है बड़ी ही मेलाइन सोच के साथ, बड़ी ट्रिक के साथ। ये जो कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा है ना, ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हो रहा है। अजी ये तो किस्मत के कारण हो रहा है, ये तो तकदीर में जो लिखा था, ये जो भाग में जो लिखा था, ऐसे ना ये बात सारी को घुमा दिया। लेकिन ये बात कोई नहीं ढूंढ रहा कि अगर मम्मी कूल थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मम्मी को तंग किया पापा ने, ये किस्मत में लिखा नहीं था, ये बाकायदा पापा की तरफ से इंजेक्ट किया गया। और अगर पापा कूल था, पर मम्मी को तो शुरू से घर में लड़ने की आदत है, इसको गुरबानी में हम बोलते हैं पेव कड़े तन वखे, जब पेके घर में रहती है, ये मेरी चीज क्यों ले ली तुमने, यहां क्यों बैठ के, ये उसको घर से आदत है पुरानी, ये किस्मत और भाग कुछ नहीं है। जब वो ऐसे स्क्वीज करके और फ्राउंस के साथ त्यूड़ी चढ़ाकर गुस्से से पति या सास के बारे में कुछ बोल रही है, सब कुछ बच्चे में स्टोर हो रहा है, जिस मर्जी जोरदार स्कूल में भेजना, इसको वहां से वायरस को नहीं निकाला जा सकेगा जो मम्मी ने डाला। जब मम्मी फीड कर रही है और फीड करते टाइम बोल रही है ओए रामू इधर आओ ये करो वो करो, गुस्से के साथ जब वो बोल रही है और पापा बोल रहा है और सास बोल रही है और एक्स वाई जी बोल रहा है, तो वो सारा फीड के साथ अंदर जा रहा है। इसको आज की मेडिकल साइंस मान गई है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम अगर नहीं भी वो बोल रहे, वो वाली एक्टिंग नहीं भी कर रहे, तो हम सीरियल देखते जा रहे हैं जिसमें ये सब कुछ बोला जा रहा है, जिसमें ये सब कुछ किया जा रहा है। हम डरावने खतरनाक सस्पेंसफुल नॉवेल्स उपन्यास पढ़ रहे हैं, हम गलत बातें कर रहे हैं, हम भूत प्रेत की फिल्में देख रहे हैं, और भूत प्रेत की फिल्में देख देख के जो हम डरते जा रहे हैं, केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बच्चे के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो गर्भ में है और चाहे वो बच्चा कंसीव होगा और चाहे वो बच्चा डिलीवर होने के बाद भी दूध पी रहा है या बड़ा हो रहा है, ये सारी बातें उसमें जाएंगी। अगर नहीं जाएंगी तो हम अपना काम करवाने के लिए मालूम है क्या करते हैं, दूध पी ले नहीं तो भूत आ जाएगा, दूध पी ले बाबा आ जाएगा, ये करो पुलिस वाला आ जाएगा। करा लिया काम अपना, पिला लिया दूध, इस दूध के साथ फियर भी अंदर घुस गया, बच्चा सारी उम्र के लिए डरपोक हो गया। अब जब बच्चा भी डर रहा है, मम्मी पापा भी डर रहे हैं, इनको एक दिमाग वाला चाहिए जो इनको धागा बांध दे, तावीज बांध दे और कोई जादू मंत्र टूना दे दे और इनको तांत्रिक की गेम में फंसा दे। वो नहीं मिला तो फेंगशुई वाला कोई आ जाएगा, वो नहीं मिला तो वास्तुकला को बहुत प्रचलित कर दिया गया, वास्तुकला वाला बोलेगा तुम्हारी सास से नहीं बनती है, पति पत्नी से नहीं बनती है, अच्छा तुम अपने बेड को इधर से उधर कर दो, बाथरूम का दरवाजा उधर कर दो, लिविंग रूम की खिड़की उधर कर दो, पर ये सब कुछ चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम वही रहेगी क्योंकि ये ठीक नहीं किया गया कि आप लड़ते क्यों हैं। ये वाली गेम को हमने कब समझना है, ये वाली हमारे साथ हमेशा चलेगी, चाहे आपका बच्चा नर्सरी केजी में है, चाहे प्ले स्कूल में है, चाहे कहीं भी पहुंचेगा, जो मर्जी बन जाए ये गेम चलती जाएगी। और अगर हमको मम्मी पापा को अगर फिक्स ना किया गया, अगेन मैं सिर्फ आपको अक्यूज नहीं कर रहा हूं, इन लोगों ने मुझे कोई उल्टा इंजेक्शन नहीं दिया कि मम्मी पापा की आपने वाट लगानी है, मैं आपके साथ हूं। हम जो मम्मी पापा हैं, हम जब तक नहीं सुधरेंगे ये बात ठीक नहीं होगी। और अगर हमको किसी ने ठीक ना किया तो ये मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद जब हमारे बच्चे की शादी होगी, हमारी बहू रानी आएगी, तो ये हमारी आदत है, इस आदत को कोई छुड़ा नहीं सका। तो हम फिर बोलेंगे ये आदतें नहीं जाती, चाहे कट्टी पोरिया पोरिया नहीं, और ये कह के हम अपनी आदत को फिर बरकरार रखेंगे और सास बहू का झगड़ा होगा, बेटा स्क्वीज होगा जिसको बड़े लाड प्यार से पाला था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्कूल जितना मर्जी जोरदार हो, जितने मर्जी जोरदार मिसेज वंदना और मिसेज गीता जी और मिसेज चंद्रन हो, जितने मर्जी जोरदार आपका पूरा स्टाफ और हेडमिस्ट्रेस हो, ये सब कुछ सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही पढ़ा पाएंगे। लेकिन क्योंकि घर में हम लोग बच्चे को, आप तो लड़ते हैं और बच्चे को मारते हैं, एम आई राइट? से नो। मारते हैं 99%, 99.9% मारते हैं, नॉट इन इंडिया, इवन इन अमेरिका जहां पर इतना सख्त कानून है, वहां पर भी बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि हम तो सीख गए हैं ना, हम तो पढ़ गए हैं ना, हमारा तो अब कुछ लेना देना नहीं है। बट यू विल बी सरप्राइज्ड, अमेरिका में जो इंसान डॉक्टर बनता है, चाहे वो यहां से जाए रेजिडेंसी करने के बाद, उसको प्रॉपर इंश्योरेंस और सब कुछ करने के बाद उसको वहां का लाइसेंस मिलता है दैट यू कैन प्रैक्टिस। और वहां का है तब भी, जब उसको फाइनली लाइसेंस मिल जाता है तो उसको उसके साथ एक चीज और पढ़ाई जाती है, अपनी जो मर्जी फील्ड में तुम कैसे बिजी रहते हो, 24 आवर्स बिजी रहते हो या जो मर्जी है, जितने मर्जी बड़े स्पेशलिस्ट और सर्जन तुम हो, जितने मर्जी पेशेंट्स देखते हो, जितनी मर्जी दूर ड्राइव करके जाते हो, जितने मर्जी मिलियन डॉलर कमाते हो, डजंट मैटर, तुमको साल में 164 क्लासेस जरूर लेनी पड़ेंगी कि न्यू मेडिकल इन्वेंशंस और मेडिकल साइंस नया क्या बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेडिकल साइंस बोलती थी 120 फास्टिंग की शुगर होनी चाहिए, आजकल उन्होंने पिछले 5 साल से 110 कहना शुरू कर दिया, नाउ टूडे दे आर सेइंग 100 है तो यू आर जस्ट प्रोन टू हैव शुगर, बीमारी हो जाएगी, तो अब उन्होंने चेंज कर दिया। पर जिस डॉक्टर को 120 पता है वो तो पुराना हो गया ना, राइट? तो वो सब डॉक्टरों को ये बोला जाता है तुम्हारी इंश्योरेंस और लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा जब तक तुम ये इतने नंबर की क्लासेस अदर देन योर प्रैक्टिस, अदर देन योर बिजी रूटीन, जब तक तुम न्यू मेडिकल साइंस को पढ़ोगे नहीं और उसके एग्जाम जब तक पास नहीं करोगे। सो हर डॉक्टर वहां 55 या 60 साल का भी हो जाए, ही हैज टू प्रैक्टिस दिस, ही हैज टू लर्न दिस। बट अफसोस, टीचर पढ़ के आ गए, अब उनको आगे कुछ पढ़ना नहीं है, दे आर क्लोज्ड। हम तो इतनी डिग्रियां लेके आ गए और पढ़ गए हैं, हमको क्या जरूरत है? तनख्वाह मिलती है, जिस स्कूल में जाना था वो मिल गया। सिमिलरली पेरेंट्स, पेरेंट्स सोच रहे हैं हम तो पढ़ गए हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो अब कुछ कर रहे हैं, मम्मी को टाइम नहीं है किट्टी से, शॉपिंग से, टीवी से, दुनिया को दिखाने से, ब्यूटी पार्लर से, इसके अलावा मम्मी को टाइम नहीं है, पापा को बिजनेस और नौकरी और करियर से टाइम नहीं है, तो हमको तो अब कुछ सीखना है ही नहीं, हमने दुनिया का बहुत बड़ा काम कर दिया ना, बच्चा पैदा कर दिया ना, बस नहीं। अब प्रॉब्लम शुरू हुई है। आप जब भी कभी देखना, फलाना प्रेमी था फलानी प्रेमिका के साथ, फलाना हीरो हीरोइन के साथ, ट्रायंगल बन गया, बीच में विलन आ गया, थर्ड लवर आ गया, ये हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, अच्छा करते कराते बीच में से एक मर गया, अब वो दोनों मिल गए, अब वो सुख से रहने लगे, आखिर में आता है दी एंड। पर एक्चुअल में ये दी एंड नहीं हुआ, ये अब स्टार्ट हुआ है। जैसे ही हम मिले, फॉर एग्जाम्पल मम्मी में 13% नुक्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो क्रोधित हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, शेयरिंग नहीं कर सकती है, उसको अपनी पड़ी रहती है, खाने का बड़ा शौक है, मिर्ची बहुत डालती है, एनी काइंड ऑफ 13 आप काउंट कीजिए, 13 प्रॉब्लम वाली एक लड़की। एंड से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मर्दों का राज है इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल 16 प्रॉब्लम पापा में है, एक मेल यंग बॉय में है, 16 और 13 मिलके 29 हो गए कि 30? थैंक यू, शुक्र है सुन रहे हैं आप। 29 प्रॉब्लम वाले ये दोनों मिलके अब जो बेबी पैदा करेंगे उसमें 29 से ज्यादा प्रॉब्लम होंगी कि कम? ये हमने कर दिया। उनतीस प्रॉब्लम के दो इंसान जिनका नाम समाज ने पति पत्नी रखा हुआ है, कपल रखा हुआ है, बड़ा ही नाइस रखा हुआ है, 7 जन्मों का मेल रखा हुआ है, इन्होंने 29 से ज्यादा मल्टीप्लाइड एक प्रोडक्ट दी इस अर्थ को, इजंट इट? तो अब ये जो बाहर आया इंसान, ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, उस प्रॉब्लम को हम सब भोग रहे हैं, भोगेंगे, कोई भी इससे बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। हम सोच रहे हैं मैं तो सब कुछ पहुंचा हुआ हूं, हमें तो कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर सोच रहा है मैं जो मर्जी फेटिसाइड किलिंग करके, जो मर्जी करके ऑर्गन बेच दूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो डॉक्टर हूं, कोई भी घर में प्रॉब्लम आएगी मैं कर लूंगा। टीचर सोच रहा है मैं पढ़ चुका हूं, मेरे को तो डिग्री प्राप्त हो गई, अब मेरे घर में बच्चा होगा या कोई भी अनपढ़ होगा उसको पढ़ा दूंगा, रिक्शे वाला उतारने भी आएगा तो उसको पढ़ा दूंगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो सबको पढ़ाने का ठेका लिया हुआ है, नाउ आई एम फिनिश्ड, आई एम सिक्योर्ड। हर कोई अपने आप को सिक्योर समझ रहा ना, ये बात ऐसे हो गई जैसे एक कश्ती में कुछ लोग बैठे हुए हैं और इधर वाले बैठे हुए लोग बड़ी जोर से रोने लगे, ऊंचा ऊंचा, ओ बचाओ बचाओ बचाओ, इधर जो लोग बैठे हैं वो तालियां मार के हंस रहे हैं, एक कश्ती में हंस रहे हैं। तो जो हेलीकॉप्टर वाला है जिसने ये सीन देखा और अखबारों और टीवी वालों को बताया कि मैंने ऐसा एक सीन देखा, तो उसने बताया कि जो रो रहे हैं उनका रोने का कारण है उनकी तरफ कश्ती में छेद हो गया, जो हंस रहे थे वो क्यों हंस रहे थे, हमारी तरफ तो छेद हुआ ही नहीं, हम सब एक दूसरे को इग्नोर करते जा रहे हैं, पूरी गेम को इग्नोर करते जा रहे हैं, जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, पूरी तरीके से हमने पूरी अपनी इन्वॉल्वमेंट हटा ली है। टीचर्स सब कुछ कराएं, अगर वहां पर पूरा नहीं हुआ तो कोई ट्यूशंस वाले टीचर्स और ढूंढ लो, हमारी जान छूटी रहे, आपकी ना शुरुआत है। आप लोग ना सबसे पहले ना इस मोड से बाहर आने की कोशिश करो कि मैंने अपने बच्चे के ऊपर इंपोज नहीं करना कि तू डॉक्टर या इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर या फलाना फलाना बन। जब हम बच्चे के ऊपर इंपोज करते हैं, उसे जबरदस्ती पढ़ाते हैं, उसको उठाते हैं, तो 97% बच्चे चाइल्ड साइकोलॉजी का जो प्रोफेसर अमेरिका में जिसने हमें लेक्चर दिया उसने बताया, वर्ल्ड वाइड की स्टैटिस्टिक्स हैं, 97% बच्चे मम्मी से हेट करते हैं। जिस मम्मी ने इतने प्यार से अपने जोबन को लगा के अपनी पूरी बॉडी को, तन मन धन को लगा के अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के पति के साथ कहीं और रहकर उसके ससुराल की सारे जो भी मुश्किलात है उसको सहन करने के बाद अपना सारा खून पसीना लगाकर जो बेबी उसने पैदा किया उसका अंदाजा लगाओ, क्या वो चाहती है मेरा बच्चा ऐसे बिगड़े? नहीं चाहती ना। और जो पापा है जिसकी पूरी फैमिली वहीं पर बरकरार है और सिर्फ एक फैक्ट्री वो घर में लेके आया है जिसमें से सिर्फ बच्चा बनेगा, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी रिलेशनशिप, एनी हार्मनी, तो अब ये सारी गेम जो बिगड़ती जा रही है, इसके लिए स्कूल्स, टीचर्स, ट्यूशंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने से पहले, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रो करने से पहले घर में ये बात ध्यान करनी है कि मैंने अपने बच्चे को फोर्स नहीं करना। सब बोलते हैं नहीं, अगर हम बोलेंगे नहीं तो ये उठेगा नहीं। सो उसने बताया कि सबसे पहले मम्मी उठाती है, और 97% बच्चों से पता लगा, बच्चे बोल रहे हैं जब हम रात को सोना नहीं चाहते हैं, नींद नहीं आ रही, बत्ती बंद कर दी है, सो जाओ, आंख खुलनी नहीं चाहिए, टांग हिल रही है, डोंट मूव, नींद नहीं आ रही है। जब नींद नहीं आ रही है तो जबरदस्ती सुलाया जा रहा है। यहां पर आपके, हम यहां पर काउंसलिंग करते हैं लोगों की फ्री, हमारा ए टू जी सारा प्रोग्राम, ऑल सेमिनार्स, ऑल काउंसलिंग्स, सब कुछ फ्री है। आफ्टर एवरी 6-7 वीक्स अमेरिका से मैं यहां पर यह करने आता हूं, पिछले 15 साल से। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं भाई कहीं से ये सिस्टम को ठीक किया जाए। केंद्रीय विद्यालय के 900 स्कूलों के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और जो कुछ भी ये सारे लोग हैं, केंद्रीय विद्यालय के हेड ऑफिस में हमने वहां पर उनके साथ सेमिनार किया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग स्टाफ को कैसे रिलीज दे सकते हैं, आप लोग पेरेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम का दरवाजा खड़काएं, मैं तो एक नाचीज हूं, मैं नहीं कर सकता। हम चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पनीरी ठीक हो जाए, हमारे पेरेंट्स को इतना स्ट्रेस है ठीक हो जाए, हमारे टीचर्स को इतना स्ट्रेस है ठीक हो जाए, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल टोटली इग्नोर्ड हैं कि नहीं? से नो है। तो फिर आज ना यहां इसलिए बुलाया गया है कि ये चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ शेयरिंग करूं कि हमको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। सिर्फ बच्चा बनाने के बाद, स्कूल में एडमिशन दिला देने के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने सोच लिया। आपने कभी सुना है कि एक मदर अपने छोटे से बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिलवाने गई, और दिलवाते टाइम जब उसने बोला ये नॉटी बहुत है, फर्स्ट टाइम आया है, कभी बिछड़ा नहीं है हमसे, तंग बहुत करेगा, यही हम कर रहे हैं ना, छोड़ दिया बच्चे को, ये आपको तंग करेगा, इसको मारना मत, ये डरता बहुत है। तो टीचर बोली नॉटी तो बहुत है ना, अगर ये मेरे को तंग करेगा उस टाइम फिर क्या करना है? उसने कहा बहुत सिंपल है, आप इसके साथ जो बच्चा बैठा ना उसको थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा, चुप हो जाएगा। अब उसे ये नहीं मालूम कि जो साथ वाला बच्चा है वो भी किसी मम्मी का बच्चा है, और मेरे से पहले वो ये कह गई होगी कि इसके साथ वाले को मारना, ये उसको नहीं मालूम। अगर हम चाहते हैं बच्चे को पैर पे खड़ा करना तो मार के नहीं, प्यार से। प्यार मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप सबको वैलेंटाइंस डे, प्रपोज्ड डे, आई लव यू, गुलाब कैसे देते हैं, एक गोडा जमीन पे लगा के, और ये सब कुछ पता है। Isn't it? प्यार आपको मालूम है, लेकिन जिस प्यार को आपने एक्नॉलेज किया है, मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा। हमारे प्रोग्राम का नाम है लिविंग ट्रेजर, साइट का नाम है www.thelivingtreasure.com.org, टोटल फ्री है, ऑल ऑडियोज वीडियोज एंड एवरीथिंग एंड काउंसलिंग फ्री है। आप उसको सुन सकते हैं, पर प्रोग्राम हम टोटली फ्री करने आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हम जब काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग करते टाइम यहां पर दो लड़कियों ने, जो एक पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी थी और दूसरी ग्रेजुएशन कर रही थी, दोनों बहनें आज हमारे प्रोग्राम की वो एक्टिव मेंबर्स हैं, दोनों ने मुझे बताया हमारे को पता लगा आपके प्रोग्राम में हमारी मम्मी आती है,
हम आपको बताना चाहते हैं कि आप मम्मी को फिक्स करो. क्यों करो? हमारी मम्मी हमारे साथ हिटलर वाला बिहेव करती है. एंड दे स्टार्टेड क्राइंग. तो मेरी मम्मी घर में बोली कि ये क्यों रो रही हैं? सारे मोहल्ले वाले सुनेंगे, तू अमेरिका से आया, दो नौजवान लड़कियां तेरे पास रो रही हैं, क्या हो गया? सो मैंने उनको बोला, एक मिनट चुप करो, इनको रोने दो, लेट देम थ्रो इट आउट. रोने के बाद जब उन्होंने बताया, मुझे बात समझ में आ गई. मैंने उनकी मम्मी को बिल्कुल नहीं बताया, पर स्लोली स्लोली इनडायरेक्टली उसको सेमिनार्स में और उसको टेप्स और बुक्स एडिटिंग करने के लिए दे दी. एंड व्हाइल डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज वो ट्रांसफॉर्म हो गई. तो आज वो बच्चों का अपनी मम्मी के साथ रिलेशनशिप बहुत जोरदार है. दोनों की शादी हो गई. शादी होने के बाद उनकी मम्मी बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मेरी बच्चियों के साथ शादी से कुछ दिन पहले इतना प्यार बढ़ गया तो मैं इनको मिस करूंगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई कि मैं लिविंग ट्रेजर के प्रोग्राम में इतना पार्टिसिपेट कर रही हूं कि मैं उनको मिस नहीं कर रही. मैं डिप्रेशन में नहीं जा रही. मेरा पति बिजनेस में बिजी रहता है. मेरे को लोनलीनेस बिल्कुल नहीं होती. बिकॉज शी इज वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी नाउ. रिलेशनशिप बन गई. इसका मतलब हमने तो आपसे कोई फीस लेनी नहीं, कुछ लेना नहीं. ये जो बुक्स और टेप्स हमारी मिलती हैं हमारे सेमिनार्स के बाहर, उनसे जो फंड्स आते हैं वो हम एम्बुलेंस चलाते हैं, गरीब लोगों को स्लम एरिया में दवाइयां देते हैं. ना पेटेंट चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना उसका रिटर्न कोई चाहिए, ना वावा चाहिए, ना पेज 3 पे फोटो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको. वी आर ओनली कंसर्न्ड कि जिस प्यार की, जिस वार्मथ की बातें कर रहे हैं वो इंडिया में, भारत के कल्चर में बड़ा पुराना है, लेकिन उसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं. मैं यहां पर पर्पजली आया हूं क्योंकि मैंने पूरब और पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों देखे हुए हैं. जो वहां पर नेगेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट यहां पर बताने आया हूं. वो नेगेटिव ट्रेन पर मत चढ़ना, आपका नुकसान हो जाएगा. जो वहां के पॉजिटिव हैं यहां पर नोन नहीं है, वो बताने आया हूं. आप इसको एंजॉय कर लीजिए, आपका फायदा हो जाएगा. ये हमारे लिविंग ट्रेजर, जीवन जांच का खजाना प्रोग्राम का मकसद है. तो हम आपको कुछ भी नहीं बताने आए, सिर्फ आपके मन के अंदर, अंतरात्मा के अंदर जो खजाना आपके पास है, उस खजाने की आपकी चाबी खो गई है, हम आपको डुप्लीकेट चाबी देने आए हैं. चाबी के चार्जेस कोई नहीं है. सिर्फ एक बात मांगते हैं, आप ध्यान से सुनो, समझो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. आपको मालूम है कि अगर आप प्यार नहीं करते, आप सो नींद नहीं आई उसको जबरदस्ती सुलाते हो, और जब सुबह वो नहीं उठना चाहता उसे बोलते हो जल्दी उठो, बस मिस हो जाएगी, उस टाइम उसकी नींद खुल नहीं रही है. आप में से कोई मेरे को एक लफ्ज बोल के बताओ नींद कैसे आती है? मेडिकल टर्म्स में नींद तब आती है जब हमारी बॉडी में, ब्रेन हमारा ट्रैंक्विलाइजर सेक्रीट करता है. जब ट्रैंक्विलाइजर यहां से ब्रेन में, बॉडी से सेक्रीट होगा तो हमको नींद आएगी. वही ट्रैंक्विलाइजर दवाइयों में डाल के दिया जाता है. एम आई राइट? राइट. आप सबके पॉइंट ठीक हैं, पर जो मैं बात करना चाह रहा था, छोटे से बच्चे के अंदर ट्रैंक्विलाइजर पैदा हो गया, बच्चा सो गया. आसपास सब जगह मैं देखता हूं, शाम के 5 बजे हैं, मम्मी काम से आई, सास को पूछती है, माता जी अब तक सो रहा है वो, उठाया नहीं उसे? पापा आ गए, ना ये कोई सोने का टाइम है, बच्चा सो रहा है. डीप स्लीप में. डीप स्लीप में इसलिए सो रहा है कि वो ट्रैंक्विलाइजर काम कर रहा है. ब्लेस्ड. लेकिन दोनों मम्मी पापा बात क्या कर रहे हैं पता है? क्या? रात को फिर देर से सोएगा, हमें सोने नहीं देगा. इज दैट राइट? अब ये उसकी गर्दन मोड़ मोड़ के उसको उठा उठा के थप्पड़ मार मार के पानी के छींटे डाल डाल के आंखें ऐसे ऐसे करके ट्रैंक्विलाइजर घटा रहे हैं उसका। कैसे घटे? इट इज ऑलरेडी सेक्रेटेड। अब वो बच्चा उठना चाह नहीं रहा है, वो क्रैंकी हो गया, वो रो रहा है, वो शोर मचा रहा है। तो वो बच्चे को रोज रोज ऐसे आदतें हम डालते गए। उस अमेरिकन साइकेट्रिस्ट से मैंने बात की थी कि मेरा एक पॉइंट है क्या कि ये सेपरेट बेडरूम वाली जो गेम आप अमेरिका ने पूरी दुनिया को दी, उसे सबसे बड़ी गलत बात ये हो गई कि बच्चा अकेला क्रिब में दूसरी तरफ सो रहा है, यहां पर मम्मी पापा अपना बिजी हैं, पर बच्चे को रात को आवाज आ जाए, कुत्ता भौंक जाए, बादल गड़गड़ा जाए, नलका चल जाए, फ्लोर पे कोई टाप की आवाज आ जाए, बच्चा डर जाता है। एट दैट टाइम मम्मी इज रिक्वायर्ड, छाती से लगाए। पर मम्मी और पापा को सोसाइटी ने बता दिया सेपरेट बेडरूम होना चाहिए। बच्चा सारी उम्र के लिए डरपोक बन गया, क्योंकि इसको जब नर्चर करना था, इसको जब प्यार करना था, इसको छाती से उस टाइम नहीं लगाया गया। जल्दी से जल्दी मम्मी को बोला गया कि अपनी ब्रेस्ट फीड इसको नहीं देनी। बच्चा दिनों दिन दुश्मन बनता जा रहा है, हम उसको उसके पैर पे खड़ा करना चाहते हैं। 97% मम्मी से बच्चे नफरत करते हैं, 94% पापा से बच्चे नफरत करते हैं, और उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट स्टोरी ऑफ अमेरिका जो यहां पर हो रही है आजकल। एक बच्चा अपने पापा को बोलता है, पापा हाउ मच यू अर्न पर आवर। अमेरिका में पर आवर की बात ही की जाती है, पर आवर के हिसाब से इतने आवर्स वीक में मिलेंगे, 40 घंटे मिलेंगे, तो पर वीक बात की जाती है, लेकिन उसमें गेम सारी पर आवर की है। पापा हाउ मच, माय डैड हाउ मच पर आवर यू अर्न, कितना कमाते हो एक घंटे की फीस, हाउ मच यू चार्ज। ही सेड $100। अच्छा, कैन यू गिव मी $100? छोटा सा बच्चा। पापा ने सोचा ऐसे ही मजाक कर रहा है, यस वाई नॉट, वट एवर यू नीड आई विल टेल यू, आई विल गिव यू, आई विल फाइंड फॉर यू, दिस एंड दैट बोल के उसने उसको चुप करा दिया। बच्चा बोला, पापा प्लीज गिव मी $100। उसने उसको $100 नहीं दिए। बच्चा नाराज हो गया, नाराज होकर अपने बेडरूम में चला गया। जब बेडरूम में चला गया, पापा ने सोचा नाराज हो गया, चलो $100 दे देते हैं, मैं ही नहीं तो इसके साथ जाना है, शॉपिंग भी करेगा, कहां वेस्ट करेगा, फेंक थोड़ा ना देगा, चलो मैं साथ चल लूंगा। ये कह के उसने डोर को थोड़ा सा खोला, देखा बच्चा बेडरूम की मैट्रेस में से कुछ डॉलर्स निकाल के गिन रहा था। ये उसके पास गया, बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछता है क्या कर रहा है, कहता है डॉलर गिन रहा हूं। उसने बोला, तूने मेरे को क्या कहा, पूछा था? ही सेड, मैंने आपसे पूछा था $100 दे सकते हैं? उसने कहा नहीं। बच्चे ने बोला, मैंने अपने डॉलर गिने, मेरे पास $60 है, क्या आप मेरे को $40 दे सकते हैं? हंड्रेड ना सही। पापा ने $40 निकाल के दे दिए, भी नाराज हो रहा है, मैं तो 100 ही देने आ गया था, पापा ने $40 दे दिए। बच्चे ने टोटल काउंट किया, आई गॉट $100। पापा ये $100 हैं, एक घंटा मेरे साथ बिता सकते हो? आई हैव पेड यू $100, क्या एक घंटा मेरे साथ खेल सकते हो? कैन यू स्पेंड 1 hour विद मी? अमेरिका का फादर 13 मिनट्स एवरेज पर ईयर अपने बच्चे के साथ स्पेंड करता है। हम कितना कर रहे हैं? बिल्कुल उससे भी घटिया दर्जे पे जा रहे हैं। क्यों? हमने तो बच्चे को खड़ा करना है, पढ़ा देना है, नंबर चाहिए। CBSE और CSBSE जो कुछ भी वर्ड्स हैं, बोर्ड का एग्जाम पास कराना है, लोग हमको कहेंगे, पूछेंगे किट्टी पार्टी में तुम्हारा बच्चा। अब आपके तो बच्चों का भी बोर्ड शुरू नहीं ना हुआ, आपकी कौन सी गेम है, कौन से कपड़े पहने आपके बच्चे ने, ऑशकोश के पहने हैं, यू नो जापान के पहने हैं, ये पहने हैं, कपड़े चेंज करके लेके जाएंगे पार्टी में, बोलेंगे हम बेंज में BMW में बैठ के आए हैं, इसकी मम्मी ने इतने लाखों का पेंडेंट डाला हुआ है, इसका डैड जो है उसने यहाँ पे माउंट ब्लैंक का पेन लगाया हुआ है, हम फलानी जगह रहते हैं। ये प्रूव करने की जो गेम है ना, ये गेम हम बच्चे के अंदर इंजेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि हम यही तो प्ले करते हैं, यही तो उसके आसपास की प्रैक्टिस करते हैं, ब्रांड नेम की बातें करते हैं। और एक डॉक्टर को जो सिख जेंटलमैन और उसकी वाइफ दोनों अमेरिका में बड़े कामयाब माउंट सिनाई में डॉक्टर हैं, उसका हस्बैंड मुझे बोलता है मेरा बेटा हमसे नाराज है, यहां पर बॉर्न ब्रॉटअप है अमेरिका में, पर 10th ग्रेड में पढ़ता है और घर छोड़ के जाना चाहता है। पूछा क्यों? बोलता है वो हमसे नाराज रहता है, मेरी वाइफ से पूछो। मैंने वाइफ को पूछा, शी इज गायनाकोलॉजिस्ट, उसको पूछा आपका बच्चा क्यों नाराज है, मैं उसको गुस्सा करती हूं कि पढ़ता नहीं है। साथ में उसका पापा बोला गुस्सा ही नहीं करती, ये मारती भी है उसको। हां, तो मैंने उसकी मम्मी को बोला एक इंसान को सपना आया कि 13 को 2 से गुणा करो 26 होता है, 2 लिखो 6 की लिखो, उल्टा लिखो, 2 इधर लिख दो, इधर लिखो, ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, 20 प्लस 6 कर दो, 30 माइनस 4 कर दो, ऐसी एक किताब बन गई। सपना एक को आया था, उसने किसी के साथ मिलके एक किताब सिलेबस में लगवा दी, तुम्हारे बच्चे को मिल गई। तुम उसका सपना पूरा कर रहे हो, तुम इकोनॉमी ऊंची कर रहे हो, तुम उसकी सेल पूरी कर रहे हो, लेकिन बच्चा तो तुम्हारा है, तुम उसको पूरा करने के लिए अपने बच्चे को मारते हो, मुझे दुख लग रहा है। तुमने 9 महीने बायोलॉजिकली बच्चे को पेट से लगाकर पेट के अंदर रख के पैदा किया और तुम उसको मारा, क्या करोगे? अगर ये पैरों पर खड़ा हो गया और तुमसे सारी उम्र के लिए दूर हो गया तो? एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। अब वो बोलती है कम से कम 1.5 साल हो गया कि मेरी मेरे बच्चे से रिलेशनशिप ठीक हो गई है, शी इज ट्राइंग टू इंप्रूव दिस। आप लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि पता ही नहीं लग रहा कि मम्मी पापा घर में कोई भी आ गया उसके सामने शराब बांट रहे हैं, ग्लास लगा रहे हैं, किसी पार्टी में गए हैं वहां पर शराब चल रही है और शराब खड़का के पी रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, आई टेल यू, आई वॉर्न यू, पूरे भारत को मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अमेरिका में उन्होंने 18 साल वाले को लो सिगरेट और शराब खरीदने के लिए आईडी का लॉ बनाया, 18 साल वाले से नीचे वाला नहीं खरीद सकता। बट लेटर ऑन दे फाउंड, तो अब उन्होंने कानून चेंज किया, अब उन्होंने 18 से चेंज करके 21 साल बना दिया। लेकिन 18 के टाइम भी और 21 के टाइम भी वो किसी और फ्रेंड को बोलते थे तू तो 21 प्लस या 18 प्लस है ना, अपनी आईडी दिखा के स्टोर से खरीद ला शराब या सिगरेट। तो ये चलता है, तो हम ये यहां लॉ ये बना भी नहीं पाएंगे, चला भी नहीं पाएंगे, प्रिवेलिंग भी है तो वर्क नहीं हो पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका बच्चा जो 11 साल का है वो अगर आपके सामने शराब पीकर ना आया तो मेरी शर्त है, 11 साल का बच्चा घर में मम्मी पापा के सामने यहां पर बगल में गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को लेकर आएगा और शराब पिएगा, वो दिन दूर नहीं अगर आज आप पार्टियों में और सेरेमनीज में शराब पीते रहे तो, अगर आप घर में शराब पीते रहे तो, अगर आप एक दूसरे को गाली निकालते रहे तो, मेरे समेत अगर हम ये काम करते रहे, हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर, हमारा सब कुछ खराब होता जाएगा। हमको ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। उस टाइम हम पता है क्या कहेंगे, तुम्हारे लिए किया था, तुम्हारे लिए तो कमाते हैं, तुम्हारे लिए तो जाते हैं, हमने कौन सा कुछ साथ लेके जाना है, सब कुछ तुम्हें ही तो छोड़ के देके जाना है, व्हाट वी आर डूइंग। छोड़ के देके जाने के बदले आज प्यार क्यों ना कर लें उसे, Why can't we love him? Why can't we hug him? मैंने अपना एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना है। जब मैं 11th ग्रेड में था, यहां पर बोर्ड का एग्जाम होता था, मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था, ए बी सी मैथमेटिक्स के 3 एग्जाम होते थे, ए बी सी। मेरा ए एग्जाम खराब हुआ, मैं एग्जाम कर देने के बाद घर पहुंचा, माय मदर आस्क्ड मी, घबरा नहीं। सेकेंड डे मेरा मैथमेटिक्स बी था, व्हेन आई केम बैक अगेन मेरा ठीक नहीं हुआ था, अगेन आई सेड बीजी आज ठीक नहीं हुआ है, शी सेड कोई गल नहीं बेटा, सी ते है ना, तो उसने मेरे को फिर प्यार किया, फिर वैसे ही उसने मेरे को नर्चर किया, अपनी पूरी वार्म्थ मेरे अंदर इंजेक्ट की. दैट इज कॉल्ड मम्मी, मदर, मां. द बेस्ट क्रिएटर जिसके बारे में बोला जाता है, गॉड जस्ट कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड माई मॉम. तो हमको कंपटीशन और ब्रांड नेम की गेम में फंसाया हुआ है, हम उसमें फंस चुके हैं बुरी तरह से. उसके उसका होमवर्क कराते हैं, गुस्से से उसका सारा काम करा के उसको स्कूल भेजते हैं, वो चिड़ा चिड़ा रहता है और दुखी होने के बाद, गुस्सा होने के बाद सोचता है जब मेरे दिन आएंगे मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा. इसीलिए यहां से बच्चा बेंगलोर जॉब करने जाता है, बेंगलोर वाला वहां से बॉम्बे चला जाता है, और ये तीनों वाला वहां से अमेरिका लंदन चला जाता है. ये सब कुछ क्या है? क्योंकि जब बचपन में हमने उसके अंदर जहर घोला. एक काउंसलिंग का सेशन मैंने अटेंड किया था जिसमें एक लेडी खड़ी होकर बोली, मेरी 35 साल उम्र है और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, बताओ क्यों? तो ऑरेटर ने उसे ड्रैग करना शुरू किया और उसको 4 साल तक की उम्र में ले गया. पिछले साल क्या हुआ था? अच्छा, 34 साल की उम्र में क्या हुआ? 33 में क्या हुआ? करते करते बोली, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कोई खास नहीं हुआ. करते करते उसको ड्रैग किया, फाइनली 4 साल की उम्र की बात उसे याद आई. हाँ, जिंदगी में उस दिन बहुत गुस्सा चढ़ा था कि जब मेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती हॉस्टल में छोड़ के आई थी और नन मेरे को उंगली पकड़ के अंदर ले जा रही थी. मैंने मम्मी की साड़ी पकड़ी हुई थी, मैं बोल रही थी मुझे यहाँ मत छोड़ो, हाय प्लीज मम्मी मत जाओ, और मेरी मम्मी मेरे से हाथ छुड़ा के जा रही थी, नन मेरे को खींच के ले जा रही थी. उस दिन मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा था. वो यहाँ बैठ गया, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई होता गया, यहाँ पर उसका कंपाउंड ब्याज बनता गया, और वो इतना मल्टीप्लाई हो गया कि अब वो चारों तरफ फैल गया. मैं जिससे हैंडल करती हूँ हमेशा गुस्सा चढ़ता है. तो ये गुस्सा चढ़ रहा है हमारे चारों तरफ, रोड रेज देख रहे हैं, जरा सा कहीं पर कुछ हो जाता है, दो कारें टकराती हैं. वी वर टॉकिंग, हमने बेंगलोर में सेमिनार किया, हम करके यहां पर आए दिल्ली में, हम हंस रहे थे आपस में, बातें कर रहे थे, और यहां पर दो कारें टकरा जाए, दोनों निकलते हैं, ओए तू पीछे कर, तू पीछे कर, और फिर गाली गलौज करके एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और पुलिस आ जाती है, झगड़ा बहुत हो जाता है. वहां पर दो कारें टकराई, दोनों ने उतर के साउथ इंडियन लैंग्वेज में बड़े आराम से कहा, अरे ये क्या कर दिया जी. वेरी सिंपल, झगड़ा खत्म हो गया. हमारा तो गुस्सा यहीं पे बैठा रहता, यहीं बैठा रहता, छोटी छोटी बात पर, निक्की निक्की गलते, हम एक दूसरे से उखड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं. पति पत्नी पर ब्लेम कर रहा है, पत्नी पति पर कर रही है, कोई सास पर कर रहा है, कोई बच्चों पर कर रहा है, बच्चे माँ बाप पर कर रहे हैं. डिसहार्मनी हो चुकी है, वी ऑल आर विक्टिम. अपने आप को रोक लो यहां पर, प्लीज रोक लो. आपके बच्चे के सामने पूरे स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई, दैट मींस एटलीस्ट 15-16 साल की गेम है जिस गेम को आप करने जा रहे हैं. प्लीज बी केयरफुल, डोंट बी इग्नोरेंट, इतने गलत काम मत करो. ये बात फिर मैं करना चाहता हूं कि लेक्चर देने वाला बार बार पेंट ऐसे करता था, बार बार अपनी पेंट को ऐसे ऊपर करता था, तो उसको सामने से एक बच्चा बोलता है, आप ये जो कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं. तो उस लेक्चर देने वाले ने बोला, अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा. राइट? यस, हम भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं. हमारे बच्चे छोटी छोटी उम्र में डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में उनको शुगर हो रही है, छोटी छोटी उम्र में हम उनको फास्ट फूड खिला के जल्दी से जल्दी अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं. वो मम्मी भी है जो अपने हाथ से परांठा पका के, अपने हाथ से रोटी बना के, न्यूट्रिएंट्स को चेक करके, सफाई चेक करके बच्चे के मुंह में डालती थी. आज की मम्मी फोन करती है, मैं यहां पर किट्टी में बिजी हूं, मेड को बोला है माइक्रोवेव में डोनट रखा हुआ है, बर्गर रखा हुआ है, उसे गरम करके दे देना, बहुत तंग करे तो कार्टून की मूवी लगा देना, अगर और बहुत तंग करे तो उसको पार्क में ले जाना. शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू नर्चर योर चाइल्ड लाइक मदर, शी इज देयर ओनली फॉर फीस. ये जो बाहर आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं ना किट्टी का, इट्स यूजलेस. प्रॉब्लम कहीं पर है, कर कहीं पर रहे हैं. किट्टी में एक लेडी को एक ने पूछा, आपका बच्चा, आप इतनी सियानी ब्यानी लगती हैं, कॉन्वेंट पढ़ी हुई हैं, सारी आपको अकल पूरी पूरी है, मैनर्स भी आते हैं, कपड़े पहनने भी आते हैं, लिपस्टिक लगानी भी आती है, सारा कुछ तो आपको आता है, पर आपका बच्चे को ये मैनर नहीं सिखाया कि अंगूठा चूसता है. उसको बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ। थोड़े दिन के बाद अगेन उसी किट्टी में उसका बच्चा अंगूठा नहीं चूस रहा था। उसी लेडी ने उससे फिर पूछा, आपने इसको क्या सिखाया? एक और लेडी थी, वो भी पूछ रही थी, मैं उसको बताऊंगी, क्या इलाज किया, अभी अंगूठा नहीं चूसता। यू नो व्हाट शी सेड? मैंने ना उसकी निक्कर ढीली कर दी है, वो निक्कर गिरती रहती है, वो ऊपर करता रहता है, अंगूठा चूसने का टाइम नहीं मिलता। सो सिंपल, प्रॉब्लम कहीं है, लुकिंग टोक्यो टॉकिंग लंदन, प्रॉब्लम है कहीं पर, उसको कहीं और फिक्स कर दिया। ऐसे नहीं होगा, अपनी जान हम नहीं छुड़ा सकते हैं। हमारा बच्चा जो है ये असेट है पूरी दुनिया का। अगर मेरा बच्चा आज कहीं पर गलत हुआ है, उसका ब्लेम मुझे आता है, मेरी वाइफ को आता है। ऐसे हम जो इस दुनिया को बच्चा देते हैं, वो हमारा ही आगे एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है, हमारा ही वो परसेप्शन है। इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको ये कोशिश करनी होगी, कोशिश डज नॉट मीन गारंटी, कोशिश जरूर करनी पड़ेगी कि हम इस दुनिया को बेहतर बच्चा बना के दे सकें, उसके ऊपर कुछ इम्पोज ना करें, ताकि उसको एग्जाम के दिनों में डायरिया ना हो, ताकि उसको डिप्रेशन ना हो, ताकि उसको स्कूल टीचर से डर ना लगे। इसके लिए अगर आप सब लोग तैयारी करेंगे, फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट और टीचरों से बात करके एजुकेशन की भी बात कर लेंगे, सिलेबस क्या होना चाहिए कर लेंगे। लेकिन आप लोग घर में प्यार करो उससे, प्लीज पढ़ाई और होमवर्क के नाम पर उसको मारो नहीं, प्लीज। आई बेग टू यू, बच्चों की तरफ से, इस दुनिया की तरफ से, आने वाली जनरेशन की तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा प्रोग्राम आपको टच कर सका हो थैंक यू, ना टच कर सका हो तो फ्यूचर में मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप 5-10% इसके गिमिक जरूर रख दो, ताकि पेरेंट्स सारे ध्यान से आकर ध्यान से सुने। टीचर्स का कोई गिमिक रख दो ताकि वो ध्यान से सुने, जबकि कल टीचर्स ने बहुत कंसंट्रेशन से बड़े ध्यान से सुना, और उन सब की पढ़ाई और डिग्री के सामने मैं बहुत कम पढ़ा हुआ था, वो भी जो पढ़ा था वो मैंने फेंक दिया। प्लीज हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आने वाले घर को, फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं, पर जीना आज पड़ेगा। आज जीने के लिए अपने जो हमने गलत कामों पर टाइम वेस्ट किया हुआ है उससे छुड़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोग पूछते हैं, आपने कितना कमाया हुआ है, कुएं भी खाली हो जाते हैं तो आप क्या अपनी पॉकेट से लगा के आ जाते हो? तो मैंने बोला, जिस दिन खाली हो जाएंगे ठीक है उस दिन आ जाएंगे, पर हम पैसा बचाते हैं, वो इस काम के लिए हम स्पेंड करते हैं। हम लोग लिविंग ट्रेजर के मेंबर किसी भी फैमिली फ्रेंड से लेके, रिश्तेदार से लेके, नियरेस्ट से लेके, जितने भी कोई हैं, हम उनकी शादी पे जाते हैं, उनको लिफाफे में पैसे डालकर या गिफ्ट नहीं देते हैं। वी सेव दिस मनी प्लस वी सेव टाइम। कोई बर्थडे पे जाते हैं, वहां पर आराम से जाके हैप्पी बर्थडे टू यू करके केक खा के आ जाते हैं, पैकिंग करने का और गिफ्ट खरीदने का टाइम हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। सेकंड, अगर हमको कोई बोलता है फलानी जगह फलाने की डेथ हो गई, तो हम उस डेथ के आसपास अगर 6 सेरेमनीज होंगी, आज इकट्ठे होंगे, फिर शक्ल दिखानी है, फिर लाइन पे खड़े होना है, फिर बोलना अफसोस है, फिर शक्ल दिखानी है, उन्होंने देख लिया हम आज भी आए थे, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, देखो आज हम क्रिया वाले दिन भी आए हैं, भोग के भी आए हैं, ये 7 के 4 के 6 के जितने भी सेरेमनीज के प्रोग्राम है, ईच सेरेमनी के साथ साथ वो सारे अटेंड नहीं करते हैं, एक प्रोग्राम में जाते हैं, पूरी हमदर्दी से जाते हैं, अफसोस नहीं बोलते हैं, कोई खर्चा नहीं करते हैं, हमारा टाइम और पैसे बचते हैं। लेकिन यहां भारत में लोग मुझे बोलते हैं, ओ वीर जी आप तो अमेरिका से आए हैं, अमेरिका की क्या बातें हैं, वहां तो सिस्टम बहुत जोरदार है, यहां तो टाइम ही नहीं मिलता सुबह से शाम तक, इतना सिस्टम बिजी है, इतनी पढ़ाई है, बच्चे आते हैं फिर ट्यूशन होती है, फिर उनका होमवर्क होता है, फिर उनको स्विमिंग में ले जाना होता है, फिर उनको डांस की क्लास में ले जाना होता है, फिर उनको ये करना होता है, फिर उनको वो करना होता है, फिर शाम का टाइम हो जाता है, फिर डिनर पकाना होता है, टाइम ही नहीं है। टाइम वेस्ट कहां करती हैं माएं, कहीं भी जाना है। आज मैरिज की सिर्फ हां हुई है, चलो हस्बैंड को जाना होगा, बच्चे को जाना होगा, होमवर्क जल्दी करा दूंगी, या आज होमवर्क रहने दे, टीचर को बात कर दूंगी, मैं एप्लीकेशन दे दूंगी, आज स्कूल मिस कर दो, आज ये कर दो, ये सारे काम मम्मी कर रही है, ऐसे ही सारे काम पापा कर रहा है, और दोनों मिलके बच्चा बना के स्कूल के ऊपर पूरी प्रॉब्लम को थ्रो करके फ्री माइंड होके सोने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज बिग प्रॉब्लम।
नमस्ते सर।
नमस्ते।
मेरी बेटी है फर्स्ट बी में मेरी बेटी है विशाखा। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब फर्स्ट टाइम उसने एलियंस का एक प्रोग्राम देखा, जिसमें उसने एलियंस का मतलब न्यूज में देखा, तो वो बोलती है कि एलियंस होते हैं क्या मम्मा, तो मैं उसको क्या रिप्लाई करती? वो मैंने उसको बोला बेटा ये होते हैं। उसके बाद जैसे आपने सेमिनार में बताया है कि पेरेंट्स सेपरेट रूम दे देते हैं बच्चों को और उनके माइंड सेट कर देते हैं कि आप अपने रूम में जाके सो जाइए, एलियंस आ जाएगा नहीं तो। तो मुझे क्या करना चाहिए सर कि मैं अपने बच्चों को मतलब मेंटली स्ट्रांग बनाऊं?
देखिए आप एलियंस या भूत से डरते हो कि नहीं, पहले ये बताओ।
सर मैं नहीं डरती।
वाह, आई थिंक द फर्स्ट एंड ओनली लेडी इन इंडिया जिसे मैं सुन रहा हूं कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरती।
यस सर।
राइट।
यस सर।
एंड दैट इज व्हाई यू गॉट दिस क्वेश्चन। हम सब लोग विक्टिम है कि टीवी में भूत प्रेत और एलियंस की चीजें दिखाई जाती हैं। दैट इज देयर सेलिंग प्रोडक्ट, दैट इज देयर टेक्निक हाउ टू सेल इट। और पेरेंट्स बिजी हैं, वो बच्चे को वही दिखाते रहते हैं। आप यही कर सकते हैं, उसको अपने पास बुलाए, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को ये समझे कि सबसे बड़ा ये धार्मिक काम है, भगवान को प्राप्त करने का काम है कि मैं अपने बच्चे को अपने पास बुलाऊं और उसको बताओ एलियंस नहीं होते हैं। डे वन से सच बताना है।
ठीक है सर।
फाइन।
ओके।
थैंक यू
सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ तो करता है हर तरह से, लेकिन अपने पापा के साथ, ग्रैंडफादर के साथ रिलेशंस जो हैं उसके नहीं है इतने अच्छे। वो अगर उनको बुलाते हैं तो वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत करता है वो। लेकिन मैं उसे जैसे डांटती हूँ या कभी गुस्सा करती हूँ तो वो मुझसे नहीं, मेरे साथ बिहेव वैसे ही करता है। लेकिन अगर पापा ने जरा सा भी कुछ कह दिया तो अब लास्ट 3-4 डेज से जैसे एक बार उन्होंने थोड़ा सा कह दिया तो वो नाराज है कि पापा ने मुझे गुस्सा किया है, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा पापा से। उसके ग्रैंडफादर डेली मॉर्निंग में उठते हैं, उसको राम राम बोलते हैं, लेकिन वो नहीं करता किसी भी तरह से, किसी को नहीं बुलाता, अपने में मस्त रहता है वो। लेकिन जो भी कुछ है सिर्फ मेरे साथ ही है।
संजना,
सोना
जी,
मेरे साथ चाहता है, हर एक काम मैं ही, मतलब मैं ही उसका दायरा हूँ हर तरह से।
वेरी गुड। सबसे पहली बात है, हम गुरबानी में पढ़ते हैं मन अपने से बुरा मिटाना, राइट। अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करो। ये तो उसकी इनोसेंस है कि वो आपके साथ सोना चाहता है, बायोलॉजिकली है, कुदरत का नियम है कि बच्चा ऐसे मम्मी के पास ही रहता है। लेकिन मम्मी को अपने मन से बुरा मिटाना होगा कि आप उसको क्यों डांटते हैं और गुस्सा करते हैं। नहीं, मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूं, आई एम सॉरी। आप सबसे पहले ये प्रैक्टिस शुरू करो कि आप उसको गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। उसको दूसरी तरफ से जो भी नुकसान पहुंचता है वो आपके प्यार से ही वो नर्चर होगा, पैचअप होगा। इसलिए जब आप जब करेंगे तो वो ज्यादा अंदर से टूट जाएगा। किसी टाइम भी टूट गया तो आपको उसकी मेंटल प्रॉब्लम शुरू होने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए आप पहली प्रैक्टिस ये कीजिए कि मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास टूट जाए, सबसे छोटी चीज, सबसे बड़ी क्या, ऊंचा बोलो, प्लाज्मा, प्लाज्मा टीवी टूट जाए या ग्लास टूट जाए, मैं उसको गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उसका दिल नहीं टूटने देना. राइट, दैट इज मच बिगर. राइट, वो दिल को मैंने नहीं टूटने देना, ये असली धर्म की बात है. जे तो प्रियादि सिख हियाओ न ठाए कही दा. अगर तेरे को भगवान से मिलने का शौक है तो तू किसी का दिल मत गिरा, मत तोड़. आपने ये सीख लिया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपने क्या करना है, बच्चे को प्यार करते रहना है और उसको हमेशा ये सिखाते रहना है कि दादा और पापा बुरे नहीं होते हैं. पर ये जीन्स के अलावा, जो हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट है उसके अलावा, बच्चे के अंदर मूड्स चेंज होते हैं.
एक्चुअली ही इज वेरी मूडी और एक्चुअली उसको थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम भी है. ही इज अ थैलेसीमिक चाइल्ड, तो हर 20 डेज में उसको ब्लड भी चढ़ता है. हाँ. तो नीडल्स ये सब चीजों से बहुत इरिटेट रहता है एक्चुअली में.
अब बहुत बहुत
सारी ये प्रॉब्लम्स भी हैं.
बहुत सीरियस पॉइंट है संजना जी. संजना जी, मेरे को आपका क्वेश्चन ठीक तरह समझ आ गया. अब आप उसके साथ मेरे को पेटी एग्जांपल्स
एक थोड़ा ना दे. ये सब है प्रॉब्लम मैं जो फेस कर रही हूँ, मैं उसको समझा नहीं पाती, मुझे ऐसा लगता है.
वो एमए पढ़ा हुआ है. क्यों समझाना चाहते हैं आप उसे? उसके पापा और दादा को तो आप समझा नहीं सकते हैं, उसको क्यों समझाना चाहते हैं? वो बच्चा है. अगर वो बच्चा ना होता, समझाना पड़ता कि वो आपके बिना भी रह सकता था. से यस और नो, रह सकता था ना आपके बिना? उसको आपकी कोई जरूरत नहीं थी. अगर वो समझदार हो गया, बड़ा हो गया, तो वो आपके पास रहता है, बच्चा है. आप उसको मत समझाइए, आप उसको सिर्फ प्यार कीजिए. पापा और दादा से रिलेशनशिप बनाने के लिए आप जो कुछ भी अच्छे अच्छे तरीके अपनाएं कीजिए, नाइस. लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए कि मैंने इसकी किस तरह रिलेशनशिप उनसे बनवानी है. डिवोर्स तो हो नहीं गया, छोड़ के वो चले नहीं गया. उनको अपनी गेम कराने के लिए उनसे बातचीत कीजिए. बच्चा बीमार है, आप इसको प्यार किया करें, जितना कर रहे हैं इसे ज्यादा किया करें. लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको डांटना नहीं है, उसको छाती से लगा के रखो बस. मैक्सिमम प्यार दो बस. अपनी जगह उसको दादा और पापा के बारे में बोलते रहो कि वो बुरे नहीं हैं, पर वो उस बच्चे को टीच करके उसके अंदर इंजेक्शन दे के नहीं आपको इंपोज कर सकते हैं उसको. ठीक है, बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी के लिए आप बच्चे को ठीक कर रहे हैं, उसका इलाज करा रहे हैं, कैरी ऑन. संजना जी, आपको सीखना है कि मैं बच्चे को और कैसे नर्चर कर सकती हूं और मैं कैसे प्यार दे सकती हूं, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मैंने 9 महीने पेट में रख के पाला है, मेरे शरीर का अंग है, मेरा इसके अंदर खून है, मेरा इसके अंदर पसीना है. आई एम ओनली कंसर्न्ड आपको ये टेंशन ना लग जाए कि मैंने अपने बच्चे को ठीक करना है, क्योंकि हमने चिंता सेमिनार किया हुआ है. आई अंडरस्टैंड मदर को क्या चिंता है, बच्चे को क्या चिंता है, बुड्ढों को क्या चिंता है, पति पत्नी को क्या चिंता है, हर किसी को क्या चिंता है. इसलिए मैं आपको चिंता नहीं लगाना चाहता. सेकेंड, मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों के घरों में जाके देखा हुआ है, किसी के घर में उसका बच्चा हमारे पास एकदम से भाग कर आता है, हमारे कोट पैंट को भी खराब कर देता है. ये अंकल वही हैं जो टीवी पे आते हैं, ये अंकल वही हैं जिसका सेमिनार सुना था, ये चुटकला बड़ा अच्छा सुनाते हैं, समथिंग समथिंग, बच्चा भाग के आ गया. दूसरे घर में जहां मैं कहीं जाता था, उनका बच्चा मेरे को देखते ही उसने थूक फेंक दी. तीसरे और किसी घर में, न्यूयॉर्क में मैं जाता था, उनका बच्चा मेरे को देखते ही दरवाजा खोलते ही बोलता था, व्हाई यू कम हियर. यू नो, मेरी सिस्टर का ग्रैंडसन. और जब मैं अंदर चला गया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी टांग पर ऐसे मारा. तो यहां इंडिया में आता हूं तो मेरे को लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल हमारा बच्चा ना मारता बहुत है, मम्मी को भी पापा को भी सबको थप्पड़ मार देता है, ऐसे तो इसको आदत ही पड़ जाएगी, तो सबको ही मारता रहेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आप मेडिकल साइंस और चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ के देखेंगे, पूछ के देखेंगे, किसी की काउंसलिंग करा लेना, वो आपको बताएंगे ये बच्चे में मूड्स चेंज होते हैं. हम हर पल चेंज होते हैं, हमारा एक एक चीज चेंज होती है. अगर यहां पर ब्लेड लग जाए ना तो अभी ब्लीडिंग होगी, कट भी नजर आएगा, दर्द भी होगा, आप उसको दबा लें, खून रुक जाएगा, 2-3 घंटे बाद खून बिल्कुल बंद हो जाएगा, और आपको 5वें या 6ठे दिन नजर आएगा कि सिर्फ स्कार है, और 10-15 दिन के बाद वो निशान भी गायब हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हर पल, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट चेंज हो रहा है। ये दुनिया सारी में सब कुछ, एवरी मोमेंट सब कुछ बदलाहट है। इसको अभी से गारंटेड मत ले लो कि इसका पापा से रिलेशनशिप बनेगी ही नहीं, दादा से बनेगी ही नहीं। अभी उसका ना ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है कि उसके चारों तरफ जितने बायोलॉजिकल रिश्ते हैं उनकी वैल्यू से समझ आए। जब मैं इसको समझ रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चा माँ के पेट में है और पापा ने उसको क्या गाली दी थी, बच्चे को याद है। ऐसे ही उसको मैंने पढ़ते हुए ये भी देखा, उन्होंने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसको ऐसे लगता है कि सब कुछ मैं हूं, मेरी बॉडी को टच किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। लेकिन गुरबानी में जैसे बोलते हैं, पहले प्यार लगा थर्ड दूध, जिस टाइम उसका टच मदर और उसकी फीड के साथ होता है तो उसके बाद उसको एक और रियलाइजेशन शुरू हो जाती है, उसका मूड चेंज होता जा रहा है, उसकी सोचनी सब कुछ डेवलप होती जा रही है, ऐसे वो डेवलप होता जाएगा। अभी उसको 3 साल का है, 2 साल का, उसको सारे रिलेशंस पता नहीं है। इसकी रियलाइजेशन के लिए आप सारी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन उसको अभी बोल के समझा नहीं सकते हैं। एक बात जो आपके अंदर नेगेटिव थी वो ये है कि मैं उसको डांटती और गुस्सा करती हूं, बस अभी पहले उसको ड्रॉप तो करो, दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड। बाकी सब चीजें होंगी, ब्लड टेस्ट वाले, ब्लड चेंज करने वाले वो करेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी वाले आपके बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट साइकोलॉजी वाले आपकी काउंसलिंग करके आपको चेंज करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिस लव को मैं बोल रहा हूं, उस लव का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ब्रांड नेम के कपड़े ले दो, उस लव का ये मतलब नहीं है आपको सुपरमैन के कपड़े ले दो, उसको सुपरमैन स्पाइडरमैन टॉयज ले दो, वो वाली वीडियो ले दो, ये लव नहीं मैं बोल रहा हूं जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं, हम तो बच्चे को हर हफ्ते घुमाने ले जाते हैं, हम तो उसको पिज्जा भी खिलाते हैं, हम तो हफ्ते में 3 दिन बाहर ही रोटी खाते हैं, बच्चे को हम नए नए कपड़े लेके देते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको तो बोलते हैं सुख रोग पे आ, ये तो बिगाड़ दिया वाकई, शी सेट के स्पॉइल कर देते हैं। मैं उस लव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नर्चर की बात कर रहा हूं, मैं वार्म्थ की बात कर रहा हूं, मैं मां की बात कर रहा हूं जिसने अपने पेट से बच्चे को निकाला है। उसको बहुत दर्द होता है कि उसके बच्चे को कोई भी कुछ कहे, तो वो क्यों करती है? Why she? For example, मुझे एक इंसान पत्थर मारता है, वो पत्थर मुझे लगा, यहां पर लगा, मेरा खून निकलेगा, मुझे जख्म होगा, मुझे जख्म होगा ना, राइट? अगर वो पत्थर मेरी मां मारे तो जख्म नहीं होगा, फिर क्यों करती है? क्योंकि मैं मां हूं, मेरे को राइट है मैं पत्थर मार सकती हूं, मेरे को राइट है मैं गाली निकाल सकती हूं, मेरे को राइट है कि मैं तेरे को डांट सकती हूं, क्यों? वाई? मैं उस सो कॉल्ड प्यार की बातें नहीं कर रहा जो चारों तरफ फैला हुआ है, हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं और उसको सब कुछ लेके और उसको स्माइल कर देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस मां के प्यार की बात कर रहा हूं जो मां दे सकती है, ओनली 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 मां, मां दे देगी, उसके अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो जाएगा कि वो विजडम भी लेगा, वो बड़ा होके बाप को भी इग्नोर नहीं करेगा, पड़ोसी के बाप को भी प्यार करेगा, पड़ोसी की मां को भी प्यार करेगा। एक बार ही उसको ये लव की विजडम अगर दे दी, डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली वो स्पॉइल नहीं होगा। पर कहीं पर वो ही गलती होती है जिसको हमने मिस किया। सास से खुंदक है, बच्चे पे निकाल दो, पति से खुंदक है, बच्चे पे निकाल दो, समाज से खुंदक है, बच्चे पे निकाल दो, लाइट चली गई, बच्चे पे गुस्सा निकाल दो, आज नौकरानी नहीं आई, तू क्यों शोर मचा रहा है, मैं कहां से दूध लाऊं, गैस खत्म है, वाई तू पत्थर क्यों मार रही है, इससे भी तो खून निकलेगा, इससे भी तो उसका दिल टूट जाएगा, इससे भी ब्लीडिंग होगी होगी, आई एम श्योर हो रही है, हम बिगड़ रहे हैं, हम स्पॉइल हो रहे हैं, मम्मी पापा स्पॉइल्ड है, क्योंकि 29 नंबर वाले इकट्ठा किया हुआ डेफिशिएंसी वाले मम्मी पापा बच्चे को पाल रहे हैं, उसको स्पॉइल कर रहे हैं। कल मैंने इनसे बात की थी कमरे में वहां पर जब हम बैठे थे प्रोग्राम के बाद, कि एक बारी रिवर के किनारे पर एक बंदा यहां पर बैठा है जो किसी डूबने वाले को बचा सकता है, उसको स्विमिंग भी आती है, अचानक एक बंदा गिरा और उसने डूबते टाइम आवाज मारी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ, बजाय इसके कि ये डूब भाग कर जंप करके उसको बचाए, इसने देखा इमीडिएटली एक और इंसान एक ब्रिज से टाप कर आया और उसके पीछे गया। इसने सोचा चलो ये बचा लेगा इसको। थोड़ी देर बाद दोनों की आवाज आने लगी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। नाउ ही वेंट जंप्ड, दोनों को बड़ी मुश्किल से बचाया, बचा के किनारे पर लाया। जो पहले नंबर पर गिरा था उसने उसको साइड पे लिटाया, जो दूसरे नंबर पे आया था उसको उसने पूछा तुम हेल्प हेल्प क्यों बोल रहे थे? बोलता मुझे तैरना नहीं आता था। कहता अगर तैरना नहीं आता था तो तू बचाने के लिए क्यों उतरा? मालूम है मैं तेरे को ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए कि तुमने मेरी प्रॉब्लम डबल कर दी, क्योंकि पहले एक डूब रहा था मैं उसको बचा लेता, तूने भी बीच में जंप कर दिया। व्हेन यू डिड नॉट नो कि बचाना कैसे है, हाउ टू स्विम, तो तूने क्यों जंप की? इसका मतलब अब ये ना समाज फ्यूचर में ऐसे भी ठीक करना होगा, जो मम्मी पापा के अंदर गलतियां हैं उनको भी शादी नहीं करनी करानी चाहिए, उनको भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। ये समाज फ्यूचर में हम बनाएंगे, लेकिन अभी आज जो गलत 29% वाले मम्मी पापा मिल गए हैं उनको फिक्स तो हमने करना है ना। एम आई राइट? से यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
सर मेरा नाम शिखा है, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा बच्चा काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो स्टडीज में भी बहुत अच्छा था। पहले वो काफी मतलब अपने अपनी स्टडीज में अपने टाइम से आगे चलता था। स्कूल में आने के बाद, इस स्कूल में आने के बाद जब मेरा सेकंड चाइल्ड हुआ तो थोड़ा बहुत मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे नॉर्मली मैं उसको गुस्सा, वैसे मेरे को भी गुस्सा बहुत आता है और उसको,
वो तो 29% में है ना
yes. और उसको भी गुस्सा होता है, लेकिन ये सेकंड चाइल्ड होने के बाद जब वो उसको तंग करता था या उसकी केयर के कारण, मतलब उसको टाइम डिवोट करने के कारण कभी उसको गुस्सा किया कि अब जैसे आप नहीं कर सकते हो, जहां पे नहीं कोप अप कर सकते हो तो कैसे आप करो कि भाई बच्चे को गुस्सा भी ना हो और आपका काम भी हो जाए?
राइट शिखा जी, आप हाउसवाइफ हैं कि काम करते हैं?
हाउसवाइफ सर।
ओके वेरी गुड, यू आर लक्की, यू आर ब्लेस्ड। सेकंड, अगर पति और सास कोई बात नहीं मानते हैं, बहू को बहुत जबरदस्त ट्रिक टेक्निक इंटेलेक्ट प्राप्त है कि कैसे मनवाना है। एट द सेम टाइम अगर बच्चा घिया या तोरी और टिंडा की सब्जी नहीं खाता तो मम्मी को मालूम है मेरा बच्चा क्या खाता है और मैंने उसके लिए क्या चीज कैसे बनानी है ताकि उसके अंदर चली जाए। एम आई राइट? सो शिखा जी, ये जो इंटेलेक्ट मम्मी के पास है ना, एज ए बहू, एज ए पत्नी, एज ए मदर, राइट, ये बड़ा जबरदस्त है। इसका, इसको एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है, इसको यूज नहीं किया गया है। पहली बात गलत हो गई है कि आप उसको छोड़ रहे हैं दूसरे घर में, ये कहीं गड़बड़ हो गई है। वो हमेशा उन दोनों की दूरी बनी रहेगी, एक के पास वो दीवार वाली मम्मी होगी और एक के पास पैसे होंगे।
नहीं नहीं सर, वो फॉर टाइमिंग, वो अभी आज के प्रोग्राम के लिए सिर्फ उसको छोड़ा है, वैसे कभी अच्छा, नहीं। और दोनों अच्छा, बच्चे हमारे हमारे साथ सोते हैं। और मतलब
very nice, very जैसा nice. I was misunderstood. Anyway, जो आपका बच्चा है उसका अगर दूसरे के साथ कहीं पर भी गलत बिहेव होता है, आपको गुस्सा चढ़ता है, आप एज ए मदर इसका रास्ता खुद खोज सकते हैं, क्योंकि जो आपके घर में अप्लाई होगा वो दूसरी मदर के लिए नहीं होगा। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, हर मदर को मालूम है मेरा बच्चा मैंने कैसे हैंडल करना है। और मदर के अंदर ये जो इंटेलेक्ट है ना, कैसे हैंडल करना है, इस इंटेलेक्ट को इग्नोर किया गया है, इस ट्रेजर को यूज नहीं किया गया। आप उसका अपने घर में बैठ के सोचें कि मैं इसके बारे में कैसे करूं, लेकिन प्यार बहुत जरूरी है। आप उसको गुस्सा करके कि छोटे को हाथ मत लगा, आप एक बड़ी भारी मिस्टेक कर देंगे, खाई क्रिएट कर देंगे दोनों के बीच में, और अपने और छोटे के बीच में, या अपने और बड़े के बीच में। इसलिए आप अगर मदर बने हैं राइट, तो आप इसके ऊपर काम करें कि मां कैसे कैसे क्या क्या कर सकती है। यू आर लक्की दैट योर चिल्ड्रन आर विद यू, यू आर लक्की दैट यू डोंट गो आउट फॉर एनीथिंग। पर फ्यू मदर्स, अगर वो टीचर हैं, वो बच्चे के बाहर जाने से आने से पहले घर पहुंच जाती हैं, समथिंग समथिंग, दैट इज डिफरेंट इशू। कुछ टीचर्स हैं, कुछ नर्सिस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, पर आपको जाना नहीं पड़ता और आप घर में बैठी हैं, आपकी सबसे डिफिकल्ट जॉब है, सबसे टफ जॉब है आपकी, और उसकी तनख्वाह नहीं होती है ना। सो उसकी तनख्वाह मैं आज लिख रहा हूं, लव देम, लव से हैंडल करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। उसको उठा लो, उसको चूम लो, उसको प्यार कर लो, उसको वहां से ट्रिगर कर लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन अगर मम्मी बच्चा बिल्कुल हथौड़ी हाथ में पकड़ के बिल्कुल ऐसे टीवी के पास खड़ा है कि मैं इसको मार दूंगा, तोड़ दूंगा टीवी, उस टाइम तो मम्मी गुस्सा ही करेगी ना, गाली निकालेगी ना, हाय टीवी तोड़ ना दे राइट। बट आई थिंक मम्मी के पास ये इंटेलेक्ट है कि वो कौन सी ऐसी चीज उसको दिखाए कि वो ऐसे देख, हथौड़ी उसके हाथ से छूट जाए और उस चीज की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाए, इस तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये प्यार मम्मी कर सकती है, इस प्यार को एक्सप्लोर करो, अपने अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस करो। मेरे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।
नेक्स्ट।
मेरे साथ इसका रिलेशन बहुत खराब होता जा रहा है, ये हमेशा कहेगी आप मुझे प्यार नहीं करते, और घर में किसी की बात नहीं मानती, मानती सिर्फ मेरी है, वो भी गुस्से से। मैं जब तक डांटूंगी नहीं
आपको, मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी, आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि मेरी माँ यहाँ सीखने आई है, उसको सिर्फ एक ही पॉइंट इंजेक्ट होगा कि मेरी माँ सबके सामने मेरी इंसर्ट कर रही है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन मैं अभी सुन नहीं सकता, आपको मैं अकेले में मिलूंगा बच्चे के अलग होके। ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, इनके सामने वो बच्चा ह्यूमिलिएट हो जाएगा, बोल रहे हैं ना आप, जो उसे ह्यूमिलिएट हो जाएगा। आप इसका क्या नाम है?
चैतन्या।
चैतन्या बहुत अच्छी है, यू आर वेरी नाइस चाइल्ड, बहुत अच्छी बच्ची है। हमारी ये आदत बहुत गलत है, जब हमारे घर में रिश्तेदार आता है, पड़ोसी आते हैं, कोई भी आता है, उसके सामने हम अपने बच्चे को खड़ा करके बोलते हैं, आपका बच्चा तो बहुत ग्रेट है, ये तो सोया रहता है, ये तो टीवी देखता रहता है, ये तो पढ़ता बिल्कुल नहीं है, ये खाता बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सारी जो बातें हम करते हैं ना, बिल्कुल टोटली हम उसको ना संतरे की तरह निचोड़ देते हैं, बिल्कुल जूस बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन उसके अंदर सारा वायरस और पॉइजन भर जाता है। इसलिए ये वाला एटीट्यूड के बच्चे को दूसरों के सामने बिल्कुल भी नहीं, एंड अकेले भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नेवर मेक देम रियलाइज तुम नकम्मे हो, तुम घटिया हो। अब तक ये वाला इंफीरियरिटी हथौड़ा जो इनके ऊपर बार बार चलाया गया, उसको इन्होंने हंडाया हुआ है। एम आई राइट? थैंक यू। कईयों को नहीं भी किया गया होगा, दोज चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड, देयर पेरेंट्स आर ग्रेट, लेकिन अपने बच्चे को मत करो ऐसे, उसको प्यार ही करो, उसको रियलाइज कराओ, यू आर द ग्रेटेस्ट चाइल्ड, यू आर बेस्ट।
सर मेरा नाम रजनी है, मेरी बेटी है यहाँ पर प्रेप ए में सोनाली। तो अभी आपने अपने जो भी अभी आपका प्रोग्राम है अभी, उसमें आपने बताया था कि सुबह बच्चों को नींद से जगाने के लिए आपने बताया कि उनको किस तरह से हमारे को हैंडल करना चाहिए, बट एक इसका आंसर हमें दे दीजिए प्लीज, कि सुबह हम उनको क्या है, किस तरह से उनके सामने किस तरह से प्रेजेंटेशन अपनी दें कि वो अपने आप ही उठने के लिए सुबह तैयार हो जाएं।
मुझे मालूम नहीं है कि आप लेट नाइट सीरियल देखते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि आप पार्टी पे जाते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि आप रात को कितने बजे सोते हैं, मुझे कुछ भी आपके बारे में मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात हम शेयर कर रहे हैं, फाइन। उसमें किसी पर अप्लाई हो किसी पर ना हो, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर बच्चे को बायोलॉजिकली मेडिकल टर्म्स के अनुसार कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए, तो अपने घर का माहौल ऐसा बनाना होगा कि जल्दी से जल्दी हम सब लोग सो जाएं। ये नहीं चलेगा कि हम तो सब लोग 11-12 बजे तक शोर गुल्ला करते रहे, टीवी देखते रहे, और बच्चे को 8 बजे कमरे में बंद करके, बत्ती बंद करके, जबरदस्ती कान पकड़ के सुनाए, राइट? नर्चर हिम, लव हिम, अपने साथ प्यार करके, उसको छाती से लगा के सोने का टाइम बनाए, तो आस्ता आस्ता उसका जागने का टाइम बनता जाएगा, राइट? और जागने का टाइम अगर आपको 5 बजे चाहिए सब्जेक्ट टू बस और स्कूल, तो वो बन जाएगा। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि सारे बच्चे ऐसे आंखें पोंछते पोंछते बड़ा रोते हुए बड़ी मुश्किल से बस में बैठ रहे होते हैं, घर से निकल रहे होते हैं, बाहर जब धुंध छाई हुई है, पापा सो रहे हैं, दादी सो रही है, दादा सो रहा है, बहन भाई सो रहे हैं, उसको जबरदस्ती छोटे से बच्चे को ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल का सिस्टम बना दिया गया है। आई विश इफ आई वुड बी एबल टू डू दिस, तो हम स्कूल के टाइमिंग इतनी अर्ली वाली जो बन गई है, या तो पेरेंट्स को कहेंगे कि तुम जल्दी सो जाओ जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या फिर क्या करेंगे, स्कूल की टाइमिंग डिले करा लेंगे। इतने छोटे बच्चे के साथ ये नहीं करना चाहिए। एक पापा मेरे से बोलता है, हमारा बच्चा हर टाइम खेलता ही रहता है। मेरे बच्चे को समझा सकते हो? हाँ, उसको लाओ। जैसे ही वो बच्चे को लेके आया, मैंने कहा, यार तुम तो बड़े लक्की हो यार, खेलते रहते हो, वाह खेला करो। पापा को मैंने पूछा, आपके पास टाइम है? तो पापा बोला, ओ यहाँ तो सिर खुरकने का टाइम नहीं है जी, यहाँ तो आप कह रहे खेलने की बात कर रहे हो, यहाँ तो अपने मरने का टाइम नहीं है, और ये है और वो है। तो मैंने उसको बोला, आप मरो या ना मरो, अपना सिर खुजलाने के लिए मुझे जॉब दे दो, मैं खुजला दूंगा, लेकिन इस बच्चे को खेलने दो। सचिन तेंदुलकर खेलता था, आई थिंक 150 करोड़ कमाता है। 150 करोड़ क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया है कि हमारे दिमाग का भूलेखा, कि ये पढ़ जाएगा तो कमाएगा, और 6 बजे क्लास में पहुंच जाएगा तो कमाएगा, करियर बन जाएगा, पांव पे खड़ा हो जाएगा, दिस एंड दैट, पर हमसे टूट जाएगा, फिर क्या फायदा है? फिर तो दुनिया भर का सब कुछ कर ले, फिर कुछ फायदा नहीं है। वो सोच रहा है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मैं रह लूंगा, मम्मी पापा को छोड़ दो। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब उसको डिवोर्स करेगी, हर किसी को लगता है मैं ही राजा हूं, हमें प्यार करना आता है, हम रोमियो जूलियट हैं, बाकी सब पागल थे। लेकिन जब उनका लव और सो कार्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जितना कुछ है वो विंडो से जैसे ही बाहर जाता है, उस टाइम मम्मी पापा ही याद आते हैं, वही छाती से लगा सकते हैं। डिवोर्स होता है और कितने टॉर्चर होते हैं, और कितने मर्डर होते हैं, कितने सुसाइड होते हैं, ये वो सो कॉल्ड लव के कारण होते हैं, जो उनको मिला नहीं था, जो लव मिलना चाहिए था नहीं मिला, और जो सो कॉल्ड लव उन्होंने जाना था उसकी गेम में वो फंस गए, राइट? सो आप इतनी वरी मत कीजिए कि मैंने आपको बोला है कि आप अपने बच्चे की नींद मत तोड़िए, उसको सोने दें, मैं ऐसा नहीं बोला है, करेक्ट? टेक्निक ढूंढनी है कि मेरा बच्चा वक्त पे उठ जाए, मुझसे नफरत भी ना करे, कौन सा गिमिक दूं, कौन सा प्यार करूं कि इसकी सेहत भी खराब ना हो, इसका ट्रैंक्विलाइजर भी पूरा इसको हेल्प कर जाए, इसको सो के इसको जो फ्रेशनेस आनी है वो भी आ जाए, और ये स्कूल भी चला जाए, राइट? क्योंकि अगर मैंने 5 बजे की गेम आपको समझा दी, और आने वाले टाइम पे और ज्यादा स्कूल इंपॉर्टेंट मशहूर हो गए, जो स्कूल 4 बजे खुलते हैं, फिर आप 3 बजे का क्वेश्चन करेंगे, कैसे 3 बजे बच्चे को उठाएं, और लोग बाग उठाना शुरू कर देंगे, नाइट के बाजार शुरू हो गए हैं ना, स्कूल भी शुरू हो जाएंगे। ये मार्केटिंग है, ये सेल करने का ढंग है। हम अपने बच्चे को प्यार करें। When I was talking about this, मैं हेल्थ कोर्स करने गया था जिंदल पब्लिक में, जिंदल हॉस्पिटल इन बेंगलोर, वहां पर 10 दिन उसके अंदर रहना होता है, पर सुबह 6 से शाम तक 8 बजे तक वो जो योगा और सारी एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, सब कुछ कर लिया हेल्थ के बारे में। 8 बजे के बाद इंटरेक्शन होता था, लेक्चर होते थे, तो उसमें मैंने ऐसे बात की, तो एक लेडी ने मुझे बताया, मेरे बच्चे ऋषि वैली और समथिंग स्कूल में पढ़े हैं, वहां वॉल्स नहीं है, स्कूल की एक बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ रात को अंदर जाके सोते हैं ताकि ऊपर बारिश न गिर जाए, लेकिन आज की डेट में उसमें एडमिशन मिलनी मुश्किल है। बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाया जाता है, दिन में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, टीचर उनसे हंसते खेलते उनको पढ़ाती है। तो मैंने बड़ा उससे पूछा, आप कहाँ रहते हैं? शी सेड, मैं श्रीलंका में रहती हूँ और मेरे दोनों बच्चों को, मैंने ऋषि वैली और स्कूल का पूरा नाम नहीं मुझे मालूम, मैं उसकी प्रमोशन के लिए नहीं आया हूं, वहां पर मैंने पढ़ाया और वहां पर पढ़ाने के बाद मेरे दोनों बच्चों के साथ मैं आजकल अमेरिका में रहती हूं। एंड दे हैव गॉट वेरी गुड जॉब, दे आर मोर देन एवरेज लेवल इंटेलिजेंट। तो हमको कहीं पर कंफ्यूजन है, ये ही कराने से होगा, क्योंकि सोसाइटी में बड़े सारे वो नोशंस बनी हुई है ना, जिसके साथ हम ड्रैग हो चुके हैं, राइट? नेक्स्ट
सर, मेरा नाम दीपा है।
दीपा,
अभी आपने क्वेश्चन ये किया था कि आपने, सॉरी क्वेश्चन आपने ये बताया था कि बच्चा खेल रहा है तो उसको खेलने दो। अगर सर बच्चा अगर सारा दिन खेलेगा तो वो पढ़ेगा?
नहीं, मैंने ये नहीं कहा खेल।
एक मिनट
दीपा जी, आपका बच्चा खेलता है?
नहीं, मेरा बच्चा खेलता भी है पढ़ता भी है। मैं आपको जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बच्चे को हम सिर्फ खेलने देंगे, अगर बच्चे का मूड नहीं है पढ़ने के लिए और नेक्स्ट डे उसका अगर उसको अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, एट दैट टाइम हम बच्चे को कैसे टैकल करेंगे? अगर हम प्यार से करते हैं, हम पूरे प्यार से करते हैं, जिस तरह से मैम ने कहा अभी कि हमें बच्चों के अंदर अपने संस्कार डालने हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज डालनी है, हम बच्चे के अंदर अपनी मॉरल वैल्यूज डालते हैं, अपने संस्कार देते हैं। जो भी पेरेंट्स ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो सब क्वेश्चंस मैं अब उस रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सबकी वही है, सेम प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर बच्चे का मूड आज भी नहीं है पढ़ने का और कल भी मूड नहीं है और परसों भी मूड नहीं है और बच्चों को हम हर टेक्निक्स दे रहे हैं, लेकिन कभी तो एक टाइम तो आता ही है ना जब मदर गुस्सा होती है, जब मदर को गुस्सा आता है, आप ये बताइए ना, जब मदर को गुस्सा आता है वो बहुत प्यार करती है। हम भी, मेरे भी दो बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चे मेरे पास होते हैं, मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी जब मेरी सेकंड बेबी हुई थी, मेरा बेटा आज तक उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा, वो उसको बहुत प्यार करता है। अगर मैं उसको उसके नानी के घर भेजती हूँ तो वो मिस करता है, उसको प्यार करता है, लेकिन वो उसको ना अपना कोई टॉय देता है ना उसका टॉय उसको देता है। मैं उसको प्यार से समझाती हूँ, मैं उसको सारी वो टेक्निक्स देती हूँ जो आपने अभी बताई, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब एज अ मदर उसके लिए दोनों बच्चे बराबर है, दोनों आंखें हैं उसकी, तो उसको उस वक्त गुस्सा आता है और वो अपने बच्चे को मारती भी है। ये सब चीजें भी तो एक संस्कार में, एक मॉरल वैल्यूज में आती है, हमें भी तो बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं। अगर बच्चा कहीं जाता है या अपने पैटर्नल ग्रैंडफादर मदर के घर जाता है या कहीं पे भी जाता है, बुआ के घर, किसी के घर भी, अगर वहां पे बच्चा इतना मतलब जरूर से ज्यादा मिसबिहेव करेगा, हम फिर भी इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी वो मिसबिहेव कर रहा है, उसको समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है तो उस टाइम पे भी मदर को गुस्सा आएगा। फिर वो सोचेगी ना, जो हमने उसको अपने संस्कार दिए वो कहां गए उस पल के लिए, जहां पे उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमें एम्बेरेस कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि बच्चा जो है वो गलत बात नहीं सीखे। अब आप बताइए कि इसमें
मुझे आपके क्वेश्चन से ये समझ आया कि मैंने पिछले एक डेढ़ घंटे से जो बोला है वो मैंने गलत बोला था।
नहीं, आपने really गलत sorry. नहीं बोला, मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत बोला।
दीपा जी, आप मुझे माफ कर दो। आप कभी बच्चे थे, आप बड़े हुए और चारों तरफ बच्चे हैं, जो माहौल है ये इस क्वेश्चन और इस किस्म के बिहेवियर, इस एटीट्यूड से ये ठीक नहीं होगा। बट आई एम ट्राइंग टू से इट एंटायरली अपोजिट टू दैट। जहां आपका बच्चा मिसबिहेव करे वहां उसको दो छोड़ चार लगाना, उसकी एक आंख है उसकी चार किडनियां भी निकाल देना, आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें। आपको बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ चुकी हुई है, क्योंकि आप मेरे ऊपर और सारी यूनिवर्स के ऊपर शायद ये एहसान जतलाने की कोशिश कर रही हैं। हम प्यार तो करते ही हैं, एहसान है
सर, मैं आप मेरी बात को गलत
माय डियर, मैं उसको ह्यूमरस होन के लेने की कोशिश कर
रहा हूँ। दीपा जी, वो
दीपा
मतलब
जी
नहीं है।
आपने
नहीं,
बोला
आपने जिस तरह से, मैं आप ये नहीं कह रही कि आपने गलत कहा, आप हमें ये बता रहे हैं कि हमें बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, जो हम हर चीज को
जिस प्यार की मैं बात कर रहा हूँ वो प्यार नहीं दिया गया,
बिल्कुल दिया गया।
आप बोलो कौन सा दिया बताओ।
हर चीज में दिया, किस चीज में नहीं दिया? अगर बच्चा कह रहा है कि मैं टीवी तोड़ूंगा तो हम उसको ऐसी चीज दिखाते हैं कि वो अट्रैक्ट होके वहां जाता है, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहा है कि मैं टीवी तोड़ूंगा।
आप टीवी जाना छोड़ दो ना, टीवी घर में मत रखो।
ठीक है भैया तू तोड़ दे, कल से तुम कार्टून नहीं देख पाओगे या तुम कुछ नहीं होगा, वो तब भी कह रहा है कि मैं तोड़ूंगा। तो एक एक टाइम ऐसा आता है।
माय डियर दीपा जी, मैं आपसे विनती कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपको बात ठीक समझ में आ चुकी है। अगर आप उस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको मुबारक है, आपको पास राइट है। एक्सक्यूज मी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आंसर के बदले ये ऐसे आर्गुमेंटेटिव बात शुरू हुई है ना, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी आंसर करूंगा तो उसमें आपको लगेगा इंसल्टिंग हो गया।
मैं अपने आप को
हेल्पलेस समझ रहा हूं कि आपको टच किए बिना, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ईगो को टच किए बिना मैं बात को कैसे पेश कर सकूं। मैं अपने आप को इस टाइम हेल्पलेस फील कर रहा हूं। हेल्पलेस फील करते हुए मुझे ये आदत नहीं है कि जब दूसरा इंसान बोल रहा हो तो मैं बीच में बोलूं, राइट? लेकिन जब हेल्पलेस फील करने लगा मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो गई और मैंने आपके बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। दैट इज माय बिगेस्ट मिस्टेक। लेकिन अगर एक पॉइंट को इस एंगल से देखें जो हम सब जानते हैं या नहीं जानते हैं कि अमेरिका में येलो बस होती है, आप स्टूडेंट्स जानते होंगे, स्कूल बस होती है येलो। ये येलो बस जब बच्चे को किस भी क्लास का पढ़ने वाला कोई एज का है उसको पिकअप करती है या उसको ड्रॉप करती है तो ये खड़ी हो जाती है और इसके दोनों ऐसे हाथ की तरह स्टॉप साइन निकलते हैं ऑक्टागनल, वो फ्लैश लाइट्स होती हैं। जब वो येलो बस ऐसे खड़ी है तो जाने वाली कारें और आने वाली कारें सबको स्टॉप करना पड़ता है, चाहे ओबामा की हो, चाहे जॉर्ज बुश की हो, जिसकी मर्जी बढ़िया बिग बिजनेसमैन की हो, रुकना पड़ता है। पता है क्यों? एक जमाना था कि एक इंसान ने अपने बच्चे को कार से उतारा, स्कूल बस से उतरा उसका बच्चा और रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा था तो कार से हिट हुआ और वो बच्चा मर गया। उसको गुस्सा आएगा, वो इस एटीट्यूड से कोर्ट का दरवाजा खड़काएगा, कार चलाने वाले को सजा भी देगा, फांसी भी दिलवाएगा और ऐसे ऐसे कुछ कुछ भी करेगा जो सब हम करते हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसको गुस्सा चढ़ा। यू आर राइट, मदर को तो गुस्सा चढ़ेगा ना। अब इस गुस्से को ट्रांसफॉर्म करने के हमारे सेमिनार्स हमने एंगर पे किए हुए हैं, क्रोध के ऊपर। आप चाहे तो वो सुन लेना, मे बी, नॉट श्योर, मे बी इट विल हेल्प टू यू और टू एनीबडी। जिसको गुस्सा चढ़ता है उस इंसान को भी गुस्सा चढ़ा, लेकिन उसने गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो 11 दिन या 13 दिन या 7 दिन के बाद सारे रिश्तेदार आते हैं और क्रिया या भोग या फ्यूनरल होता है, उसमें सारे लोग आए, उसने सबको बोला मुझे सॉरी, अफसोस, दुख प्रकट करने की जरूरत नहीं है, कंडोलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा बच्चा कार के नीचे ऐसे दब के मर गया, तो मैंने ना इस गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया है क्रिएटिविटी में। क्या? कि फ्यूचर में ऐसे कोई बच्चा रोड क्रॉस करते हुए ना मरे। एंड ही क्रिएटेड दिस आइडिया, कार का, बस का, फ्लैश लाइट्स वाला। तब से अब अमेरिकन सॉइल के ऊपर, प्लस अमेरिका जो कंट्रीज, चाहे वो सेंट थॉमस और जितने भी आइलैंड्स हैं, वहां तक ये लॉ पास है कि जब बच्चा उतरेगा या चढ़ेगा अपने घर के दरवाजे के अंदर तक चला नहीं जाएगा तब तक वो फ्लैश लाइट्स ऑन रहेंगी, कोई निकल नहीं सकता। तो उसने क्रिएटिव काम किया ना, मम्मी को जब ऐसे गुस्सा चढ़े, मम्मी को गुस्से के बदले, बच्चे को मारने के बदले, बच्चे को डांट के गुस्सा करके दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट करने के बदले, क्रिएटिविटी करनी है, अपने क्रोध को वीर रस बनाना है, अपने क्रोध को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी फायर को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने फ्लड को ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, क्रिएटिव करके ये सोचना है कि फ्यूचर में ऐसे ना करे मैं कैसे करूं। आपकी इस जस्टिफिकेशन के साथ मैं सहमत नहीं हो पाऊंगा कि आखिरकार सब कुछ देते हुए, मैडम ने जितना कुछ बोला था वो सब कुछ अभी हम दे नहीं रहे हैं, अदरवाइज उसका दिमागी संतुलन बराबर है, कोई खराब नहीं है कि अगर आप सब कुछ दे रहे हैं तो फिर भी आपको वो पढ़ाने की कोशिश कर रही है। शी रियलाइजेज दिस ऑल्सो कि ये मिसिंग है, मॉरल वैल्यूज हम दे नहीं रहे हैं अभी। अगर आपको महसूस हुआ कि बच्चा गुस्सा करता है, तंग करता है, दूसरी जगह पर जाने पर वहां पर प्यार करने के बावजूद करता है, देन यूज योर क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी दूसरे के पास काम करेगी या नहीं आई डोंट नो, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वही सेम बात ईच इंडिविजुअल मदर सोचेगी, मेरा बच्चा, क्योंकि उसका बच्चा तंग कैसे कर रहा है, दूसरी का कैसे कर रहा है, दोनों डिफरेंट इशू है। उसका बच्चा साउथ दिल्ली बैठा है, उसका ईस्ट दिल्ली में बैठा है, डिफरेंट प्लेसेस में है, जीन्स अलग अलग हैं, पापा अलग अलग हैं, मम्मी अलग अलग है, जो डीएनए में आया सब कुछ अलग है। इसलिए ईच इंडिविजुअल को सोचना होगा मैं कौन सी इस गुस्सा चढ़ने के बाद क्रिएटिविटी करूं। पर गुस्सा अगर एकदम से निकाल दिया तो क्रिएटिव करने के लिए आपके पास कुछ रहा ही नहीं। निकालो मत ना, यस यूज इट। गुस्सा गलत नहीं है, गुस्सा कुदरत ने, भगवान ने हमारे अंदर बिल्ट इन दिया हुआ है, लेकिन उसका यूज हमको नहीं आता, राइट? अब जब आप बीच में इंटरफियर कर करके बोल रहे थे, आपकी गलती नहीं है, पर मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। गुस्सा चढ़ने के बाद मुझे बात समझ में आई, फरीदा बुरे दा पला कर, राइट? तो मेरे अंदर बुरा ख्याल आया कि ये तो बोलती जा रही है, सुनी नहीं रही है। तो मेरे को अंदर भला ख्याल पता क्या आया, इमीजिएटली मैं आपसे माफी मांग लूं, दैट आई एम सॉरी, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा वही क्रोध है जिसने ये बर्दाश्त ही नहीं किया कि मैं आपके बात पूरी सुनूं और मैंने इंटरफियर किया।
सर मेरा नाम मानसी है, मुझे अपने बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की। मैम की बात जहाँ पे पूरा प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे यही समझ में आया कि लव और अफेक्शन ऐसी चीज है जिससे हम दुनिया को जीत सकते हैं, तो बच्चे क्या चीज है?
मानसी जी वाह,
तो बच्चे तो कुछ भी नहीं है, बच्चे सिर्फ हमारी परछाई है।
ओह वाह,
बिल्कुल,
मैं दो घंटे में ये नहीं बोल सका जो आपने एक सेंटेंस में बोल दिया।
उनके बच्चे ने अगर बोला कि मैं टीवी तोड़ दूंगा, और वो भी प्रेप का बच्चा, उसने कहीं से नहीं सुना, उसने बात अपने घर से सुनी है, नहीं तो इतना छोटा बच्चा ऐसी बात नहीं बोल सकता कि मैं टीवी तोड़ दूंगा, और वो टीवी तोड़ेगा भी नहीं। यहाँ तो मम्मी को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, मम्मी चुप हो जाए। आपका बच्चा इतना समझदार है वो टीवी तोड़ेगा नहीं, उसे पता मैं कार्टून नहीं देख पाऊंगा कल, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप यहाँ पे गुस्सा करेंगी तो आप उसको और बढ़ा रही हैं उसके गुस्से को। आज टीवी कह रहा है, कल को बोलेगा मैं ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, कल वो आपको भी कुछ बोल देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे,
राइट? वाओ,
तो
मानसी जी
बिल्कुल, तो इसलिए बच्चे तो बहुत स्वीट बच्चे होते हैं। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं यू आर द बेस्ट मदर, इतना बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एनटीटी किया, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल रही थी, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा जो वैल्यूज बच्चों को मैं दे सकती हूँ मेड नहीं दे सकती। तो बच्चे मेड के हाथ से जैसा खाना खाएंगे उनको वैसा लगेगा, तो इसलिए बच्चे तो बहुत स्वीट होते हैं, बच्चों जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में।
मानसी जी आई रियली ग्रेट,
थैंक यू सर,
एंड लेट मी कॉम्प्लीमेंट कि ये जो फायर है इसको बुझाने के लिए क्या आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं? थैंक यू, आई नीड योर एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट। बच्चों को प्यार करें, ये तो अब मूवीज आनी शुरू हुई हैं, थ्री इडियट्स या तारे जमी पर एंड ऑल दीज, ये बहुत ग्रेट एफर्ट है कि वो ऐसी मूवीज बना रहे हैं, लेकिन हम जो 15 साल से कर रहे हैं या पिछले 40 45 साल से मैंने दुनिया में देखा है, मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं, मैं कहीं गलत हो सकता हूं, पर मेरा एक ही इंटेंशन है, प्यार, विजडम, लव, जितना उसको भाग मिले।
सर,
यस
सर, आई एम, माय नेम इज शशि, आई आल्सो एग्री विद यू। मैं यही बात कहना चाहती थी जो इन्होंने कही पीछे, लेकिन ये मेरा बेटा है, ये छोटा स्कूल नहीं आना चाहता था, सुबह उठते टाइम बहुत तंग करता था, कहता था मैं स्कूल नहीं जाता। मैंने इसे रीजन पूछा तो इसने बताया कि मम्मी मुझे वहां आपकी बहुत याद आती है, मैं क्या
करूं,
मैं अब क्या करूं। आप इससे पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोली, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। मैं इस, ये सामने बैठा है, इससे आप पूछ सकते हैं। ये यही बहाना करता था कि मम्मी मुझे आपकी वहां बहुत याद आती है।
ये बहाना नहीं है, वो सच बोल रहे हो, है ना, मम्मी अच्छी है ना। हाँ,
तो मैंने इससे समझाया, बेटा अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप अनपढ़ रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में।
हाँ, ये
आगे, अब आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तब से यह बात इस बच्चे के मन में बैठ गई। इस बच्चे ने बोला मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा मम्मा, और मैं अनपढ़ रह के कबाड़ी नहीं बनूंगा। यही बात सुन के अब ये रोज स्कूल जाता है। मतलब आई एम आल्सो एग्री विद यू कि लव सब कुछ कर सकता है जिंदगी में।
थैंक यू जी, थैंक यू शशि जी, आप सबने इतने प्यार से सुना, इतनी एकाग्रता से सुना, इतनी कंसंट्रेशन से सुना, आप सबका धन्यवादी हूं, ऋणी हूं, आपका थैंक्स करना चाहता हूं कि आप 2 घंटे बैठे रहे, मुझे खड़ा रखा, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।